मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر درس چل رہا ہے کہ انسان جلباز ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، خوشی پہنچتی ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، تو وہ علامتیں جن میں پائی جائیں وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ غموں میں صبر کر لیتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں۔ وہ ان میں پہلی علامت اللہ نے بیان کی، الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، سب سے پہلی علامت کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز کو پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ مثالوں کے ذریعے نا اصول اور ضابطے سمجھاتا ہے۔ اصل میں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ سے گہرا رشتہ ہے۔ تو جب آپ کا اللہ سے گہرا رشتہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی زندگی بہت ہی بیلنس ہوتی ہے۔ دیکھیں آج کل ڈاکٹر ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، بیلنس لائف ہونی چاہیے۔ بیلنس کو اردو میں کہتے ہیں اعتدال، ایک معتدل زندگی۔ تو دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کی ہر چیز میں اعتدال ہو۔ جانوروں کی طبیعت میں اعتدال آٹومیٹیکلی اللہ نے ڈال دیا ہے، جتنے بھی جانور ہیں نا وہ معتدل ہی ہوتے ہیں، جو ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے وہ اسی ٹریک پہ چلتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ بہت زیادہ دیا ہے تو یہ ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش کر لیتا ہے بعض دفعہ، ڈیڑھ ہوشیار، یا تو یہ ایک طرف بہت زیادہ چلا جائے گا یا یہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ یعنی جو چیزیں اسے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، کوئی غیب کی چیزیں نہیں ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی اعتدال کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اب دیکھیں میں ڈائٹ کی مثال دیتا ہوں نا، ڈائٹ کی، ڈائٹ کا تعلق تو ہماری صحت سے ہے، مادی زندگی سے ہے۔ تو مادی زندگی کو اگر آپ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہے، صحت اچھی رہے، تو اعتدال والی خوراک ہے یا افراط و تفریط والی خوراک؟ اعتدال والی خوراک۔ مثال کے طور پر ہماری باڈی کو پروٹین بھی چاہیے، تو اب آپ پروٹین ہی پروٹین کھائے چلے جا رہے ہو، صبح شام انڈے گوشت کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے آپ پروٹین کا ایک ڈبا بن جاؤ، بہت سارے نقصانات آپ کی باڈی میں اتنے سارے ہوں گے۔ پھر آپ نے کہیں فضائل سنے کہ جی سبزیاں کھانی چاہیے، ان میں وائٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں، تو آپ نے صرف آلو پیاز ٹماٹر ہی پھوڑنا شروع کر دیے، انڈے گوشت موشت دودھ مود آپ کی فہرست سے بولو نکل گئے، تو بھی نقصان دہ آپ باریک سے ہو جاؤ گے، یعنی گوشت نہیں ہوگا، فیٹ ویٹ ہی ہوگا آپ کے اندر اور چہرہ بے رونق ہو جائے گا۔ جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں نا، ویجیٹیرین، ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو، چہرہ ہمیشہ گوشت خوروں کا ہوتا ہے، با رونق، فیٹ کھانے والوں کا، ملائی پھوڑنے والوں کا۔ ملائی کھائی نہیں جاتی، ملائی پھوڑی جاتی ہے۔ میرے گھر والے دودھ میرے سے چھپا کے رکھتے ہیں آج بھی، जैसे ही दूध गर्म हो ना और उसके ऊपर मलाई आ जाए, मलाई जो ऊपर तैर रही होती है, थोड़ा सा ठंडा हो, थोड़ी सी हो ताकि जरा सही तरह जम जाए। तो फिर मेरे घर वाले ने पासवर्ड लगाया हुआ है देगची के ढक्कन पे, क्योंकि उनको पता है कि ये नहीं छोड़ेगा। तो वो उसका एक अलग लज्जत होती है, फ्रिज की मलाई नहीं, फ्रिज की जमी हुई वो बेकार है। जो ऐसे दूध बॉयल हुआ हुआ हो और उस पर फिर मलाई ताजा ताजा आई हुई हो, वो उतारने का ही अपना एक मंजर होता है यार, बड़ा टाइट है, ऐसे जबरदस्त स्टाइल से उसको उतार के जब आप प्लेट में डालते हैं और चम्मच से फोड़ते हैं या किसी भी चीज से, तो वो बाहर बयान से हट गया हूं मैं। डॉक्टर कहते हैं वो नुकसानदेह वगैरह वगैरह। तो हाँ बात चल सब्जी पर चल रही थी, उसमें मलाई आ गई ना, तो वो जबरदस्त मैं नहीं छोड़ता। तो उससे घर वालों को गुस्सा क्यों आता है, फिर सवाल पैदा होता है। गुस्सा इसलिए आता है कि दूध का बेड़ा गर्क हो जाता है, दूध सारा वो क्रीम उतर गई तो पतला हो गया दूध। तो सवाल पैदा होता है, भाई मुफ्ती साहब घर वालों को तो गुस्सा जब आ रहा है तो बाहर से मंगा के खा लो ताकि दूध का बेड़ा गर्क ना हो। उसका जवाब यह कि उसमें वो टेस्ट ही नहीं होता जो बाहर से मंगवा के खाने में। जो इस तरह से खाने में मजा आता है ना कि आपको पता है कि खाऊंगा तो डांट पड़ेगी, कोई गुस्सा होगा, उसमें जो खाने में मजा है वो ऐसे खाने में मजा नहीं है। वैसे भी होटल की खरीद की खाओ वो मजा ही नहीं आता। अच्छा खैर, तो बात ये चल रही थी कि गोश्तखोरों के चेहरों पर, जो हिंदू लोग गोश्त नहीं खाते ना, मैं उनको समझाना चाह रहा हूं कि गोश्त खाया करो। अल्लाह ने हमें मुसलमान बना के हम पर बहुत बड़ा फजल ये कर दिया कि दुनिया में बहुत सारे मजाहिब गोश्तखोर नहीं है, गोश्त नहीं खाते। हमारे मजहब में गोश्त खाना हमारे मजहब का हिस्सा बना दिया अल्लाह ने, बकरीद पे भी, अकीके पे भी, वलीमे पे भी। तो ये हमारे मजहब का हिस्सा है, हम वेजिटेरियन हो नहीं सकते, काइंडली मजबूरी है हमारी। खैर, तो अब बैलेंस डाइट, डॉक्टर कहते हैं डाइट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस। भाई उसमें आपने फल फ्रूट भी लेने हैं, अंडे मंडे भी लेने हैं, सब्जी भी लेनी है वगैरह वगैरह, मलाई भी कभी कभार फोड़ दो तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट लेता है उसकी हेल्थ कैसी होती है, बोलो अच्छी। तो कुरान ये कह रहा है कि रूहानी तौर पर भी तुम्हारी डाइट में बैलेंस होना चाहिए, तो तुम्हारी मेंटली सेहत उससे क्या होगी, अच्छी। ये जो गमों में एकदम बौखला जाना, डिप्रेशन में चले जाना, और खुशियों में आपे से बाहर हो जाना, तकब्बुर करने लगना, दूसरों को नीच दिखाना, ये इसकी अलामत है कि आप साइको पेशेंट हैं, आप मेंटली हेल्दी लाइफ बोलो नहीं गुजार रहे। गोरों की फिजिकल लाइफ बहुत अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, 90-90 साल भी चले जाते हैं। मेंटली हेल्थ में उनके क्या प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, बहुत सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो रूहानी हेल्थ कह लें या मेंटली हेल्थ कह लें, उसके सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि आपकी रूहानी लाइफ भी हेल्दी हो। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि देखो, इंसान दो चीजों का मजमूआ है, रूह और जिस्म। खाली रूह नहीं है, खाली जिस्म नहीं है, हमारी बॉडी में रूह भी है। जानवरों की रूह का मसला यह है कि उनकी रूह को जैसा होना चाहिए वैसे बना दिया अल्लाह ने, इंसानों का ऐसा नहीं है। इंसान अपनी मर्जी से एक तरफ को ढलकता है, इंसान जो है वो अपनी मर्जी से एक तरफ को जाता है, बुजदिल बन जाता है, बहादुर बन जाता है, कंजूस बन जाता है, सखी बन जाता है, जरा जरा बेसबरा बन जाता है, नाशुकरा बन जाता है, मुतकब्बिर, फखूर, शेखियां भगारने वाला। कुरान के अल्फाज क्या है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। जिनके पास दौलत है, सखावत नहीं है और वो दौलत पे इतराते हैं, तो अल्लाह कहते हैं, अल्लाह तकब्बुर करने वाले और शेखियां बिगाड़ने वाले को फखूर कहते हैं। फखर, हर वक्त फखर करना, मैं ऐसा, मैं वैसा, तो अल्लाह को ये शेखियां बिगाड़ने वाले पसंद नहीं है। तो जो शेखियां बिगाड़ रहा है ना, वो उसकी रूहानी लाइफ डिस्टर्ब हुई हुई है, उसकी रूहानी लाइफ ठीक नहीं है। ये बेसुकूनी में जाएगा, ये लाजमी जाएगा बेसुकूनी में। तो जैसे मेरे भाई फिजिकल हेल्थ को सेहतमंद रखने के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है, ऐसे ही इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए जो उसकी लाइफ है उसमें भी एतदाल और बैलेंस बोलो जरूरी है। वो बैलेंस क्या है, वो बैलेंस ये है कि आपका वो बैलेंस पैदा कैसे होता है? वो ऐसे पैदा होता है कि आपका बनाने वाले से ताल्लुक कवी हो जाए। इंसान जब तक अल्लाह से उसका रिलेशन मजबूत नहीं होगा, ना वो इंसान का बच्चा बन सकता है, ना उसको गमों में सब्र आ सकता है, ना वो खुशियों में एतदाल से रहता है। तो ये अल्लाह से रिलेशन के बगैर ये बैलेंस और एतदाल मुमकिन ही नहीं है। और खास तौर पर पांच कुव्वतें अल्लाह ने इंसान में ऐसी रखी हैं, पांच कुव्वतें, ऐसे तो बहुत सारी ताकतें इंसान की बॉडी में, लेकिन पांच ऐसी ताकतें जो हर वक्त हम उनसे काम ले रहे होते हैं। उन पांच कुव्वतों को अल्लाह ने हमें दिया है हमारे फायदे के लिए, लेकिन उसको अगर हम एतदाल से इस्तेमाल नहीं करते तो वो हमें उल्टा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। एक मिसाल देता हूं, भूख की एक ताकत है, भूख ये भी एक ताकत है, तभी ताकतवरों को भूख ज्यादा लगती है, कमजोरों को भूख कम लगती है। भूख की ताकत अगर खत्म हो जाए, भूख की लगना खत्म हो जाए, भूख की ताकत है जिसकी वजह से हम खाते हैं, खाने की तरफ लपकते हैं, दिल चाह रहा होता है बस फोड़ फाड़ दें। तो अगर हम इस ताकत का इस्तेमाल ही छोड़ दें, हम कहें भूख लग रही है लगने ही दो, नहीं खाओ बस, तो इससे सेहत खराब होगी कि नहीं होगी? भाई अल्लाह ने भूख दी इसलिए ताकि इस बहाने खा लिया करो। बाज लोग इतने बिजी होते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो अल्लाह उन पे भूख मुसल्लत कर देता है। वो जो काम कर रहे होते हैं ना, जिसमें वो बिजी होते हैं, मसरूफ होते हैं, तो उस काम में भी उनका फिर दिल नहीं लग रहा होता। दुनिया में कुछ ऐसे मसरूफ लोग हैं कि अगर भूख फितरत उनको ना लगाती तो वो कभी भी जिंदगी में खाना ही नहीं खाते। वो कहते हैं टाइम वेस्ट होता है, हम अपने मिशन को नहीं आगे पीछे कर सकते। तो अल्लाह उनको भूख लगा देते हैं, अल्लाह को मालूम है इनकी सेहत खराब हो जाएगी, तो भूख मुसल्लत हो जाती है उनके ऊपर, उनका उस काम में भी दिल नहीं लग रहा होता। तो फितरत उनको कहती है कि अगर तुमने अभी भूख की ख्वाहिश को नहीं मिटाया तो जिस काम के लिए तुम टाइम बचा रहे हो ना, वो काम भी नहीं होगा तुमसे। तुम ना चाहते हुए भी वो खाने की तरफ लपकते हैं। हैं ऐसे 1% भी नहीं होंगे, क्योंकि 99.9% तो हुए कि नहीं भी लग रही हो तो लपक रहे होते हैं, खाने की तरफ लपक रहे होते हैं। तो अगर आप भूख की ताकत को इस्तेमाल ही ना करें, भूख की ख्वाहिश को इस्तेमाल ही ना करें, यह भी गलत है। और अगर आप हर वक्त भूख ही मिटाने की फिक्र में लगे रहें, भूख आपकी खत्म हो गई फिर भी खाए चले जा रहे हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। तो अल्लाह ने उसमें एक एतदाल दिया है, भाई कितना खाना है, खाना भी है, ये नहीं कि अवॉइड ही करते रहना है, और कितना खाना है, किससे कितना बचना है, इसका एक उसूल और जाब्ता मेडिकल साइंस ने भी बता दिया और इस्लाम ने भी बता दिया। तो हमारी जो पांच कुव्वतें हैं ना, वो कुव्वतें हैं कि जिनमें बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। उसमें अगर एतदाल ना हो तो इंसान फिर इंसान का बच्चा नहीं रहता, या तो दूसरे का नुकसान करता है या अपना नुकसान करता है। एक कहलाती है कुव्वत अकलिया, अकल ये एक ताकत है, ये भी एक अल्लाह ने हमारे अंदर एक सलाहियत दी है। ताकत का मतलब एक सलाहियत, एक फन, एक कमाल अल्लाह ने इंसान को दिया है, जो जानवरों के पास ही अकल बोलो नहीं है। ये किसके पास है? इंसान के पास है। इस अकल का एतदाल से इस्तेमाल, वो भी मैं इसकी तफसील बताता हूं। दूसरी चीज अल्लाह ने इंसान में रखी है कुव्वत गजबिया, गुस्सा। अगर किसी में गुस्सा बिल्कुल ही खत्म हो जाए, लोग खा जाएंगे उसको। थोड़ा सा इंसान डर रहा होता है कि यार अगले को गुस्सा भी, कमजोर से भी डरता है थोड़ा सा कि भाई ये भी एक वक्त तक बर्दाश्त करेगा, गुस्सा आ गया तो फिर इसका मीटर घूम जाएगा। एक साहब को मैंने कहा वो तो बड़ा कमजोर है, आप उससे लड़ते क्यों नहीं? उन्होंने कहा भाई वो बेइज्जती बहुत कर देता है, गुस्से में जब आता है ना, तो मैं अपनी बेइज्जती सबके सामने कराना नहीं चाहता। तो डरते हैं लोग, भाई गुस्से में तो वो कुछ भी कर देगा। ये कुव्वत गजबी है जो अल्लाह ने इंसान में रखी है। एक है मोहब्बत, ये भी कुव्वत है, बहुत सारे काम आपसे करा लेती है मोहब्बत। बाज दफा इंसान को मोहब्बत होती है महबूब को खुश करने के लिए, बहुत सारे काम कर देता है। मोहब्बत ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ भी नहीं करेगा। आपको कहा कि भाई इजी लोड करवा दो, गफ्फार ने बोला करवाओगे आप, जमशेद ने बोला करवाओगे, महमूद ने बोला करवाओगे, महमूदा बोलेगी तो फौरन 500 का बैलेंस बोला था 1000 का बैलेंस डालोगे आप, क्या ख्याल है? तो मोहब्बत बहुत से काम करा देती है इंसान को, औलाद की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, मां बाप की मोहब्बत। हम बहुत सारे हुकूक जो अदा कर रहे होते हैं, ये सिर्फ कानून की वजह से नहीं, ये सिर्फ शरीयत के कहने में नहीं, बल्कि इसमें अपने दिल की मोहब्बत का भी बहुत दखल होता है, दिल की मोहब्बत का बहुत दफा, शरीयत नहीं भी कह रही होती है, मोहब्बत में काम कर रहे होते हैं। तो ये एक मोहब्बत है, एक मोहब्बत एक जो एक कुव्वत और ताकत है जो इंसान से बहुत सारे काम कराती है। एक हो गई कुव्वत अकलिया, एक हो गई कुव्वत गजबिया, एक हो गई कुव्वत, यानी एक मोहब्बत भी एक कुव्वत है, एक कुव्वत कुव्वत शहवानिया, शहवत जिसे कहते हैं, जो मर्द में औरत की तरफ और औरत में मर्द की तरफ, ये कुव्वत अगर ना होती तो आज दुनिया में पब्लिक बोलो ना होती, मां बाप को औलाद ना मिलती जो उनकी खिदमत करती, नस्ल ना बढ़ती, कमाने वाले बेटे ना मिलते, पोते नवासे ना मिलते, तो सिर्फ फजाइल सुनकर थोड़ी कोई शादी करता। आप लोगों को बताते किसी ख्वाहिश है नहीं इसमें शादी की, आप समझाते निकाह करो इससे नस्ल बढ़ेगी, क्या तू बढ़ा ले मैं अभी मसरूफ हूं, यही कहता ना, क्या ख्याल है भाई। शहवत अगर मर्द और औरत में ना होती, औरत की मर्द की तरफ रगबत और मर्द की औरत की तरफ, तो फिर हम मैं बयान कर रहा होता कि देखो निकाह करो वरना इंसानों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्ल खत्म हो रही है, ये जो दुनिया में आबादी है तकरीबन 6 अरब, ये मर गई तो खत्म, यहां बंदरों का राज होगा, फिर दोबारा से डॉर्मेंट बंदरों को इंसान बनाएगा, करोड़ों खरबों साल लगेंगे उसमें, क्या ख्याल है, यही होगा ना। डॉर्विन तो अब गया, अब बंदर ही आके बताएगा कि हम इंसान बनेंगे खरबों साल के बाद, तो नस्ल बढ़ जाएगी, लोग कहेंगे बढ़ने दो, क्या ख्याल है, लोग कहेंगे क्यों हम खर्चे पालें अपने जिम्मे एक औरत का फिर बच्चों का, बस सही है इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। लेकिन अभी आपके अंदर शहवानी जज्बात हैं, जैसे ही मैं शादी की बात करता हूं आप जन्नत जहन्नम पे इतना नहीं भड़कते, शादी की बात सुनते ही आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती, एकदम हिल हिल पूरे हिलना शुरू हो जाते हो और बोलते हो बस यही टॉपिक चलाओ अब, तो दूसरा टॉपिक ही नहीं होगा। तो ये क्या है, ये कुव्वत शहवानिया है जो मर्द और औरत में अल्लाह ने मुसल्लत की है, जैसे भूख मुसल्लत की है, भूख खत्म हो जाए होटलों का बिजनेस बोलो खत्म, चाहे तेरी मेरी बिरयानी का हो, वो जब रिबन काट के आए, या किसी मेरी तेरी बिरयानी का हो, आड़ी तिरछी बिरयानी हो, टेढ़ी मेढ़ी बिरयानी हो, सीधी सादी बिरयानी हो, कोई भी हो, कुछ भी नहीं चलेगा बिजनेस। भूख मजबूर करती है हम पैसा खर्च करें, रोटी खरीदें, गोश्त खरीदें, बिरयानी खरीदें, बर्गर खरीदें, तो ये सब भूख और प्यास हमें मजबूर करती है। तो ये जो चौथी चीज है ये है कुव्वत शहवानिया, ये भी इंसान के अंदर अल्लाह ने कुव्वत रखी है। पांचवी चीज है कुव्वत, यानी मोहब्बत के अपोजिट में बयान करना चाहिए, बोझ और नफरत। मोहब्बत के अपोजिट क्या है, बोझ और नफरत। ये नफरत भी बहुत सारे काम कराती है इंसान से, कुछ पॉजिटिव और कभी नेगेटिव, पॉजिटिव भी बहुत कराती है नफरत। मजलूमों पर जुल्म होता हुआ जब इंसान देखता है तो नफरत किससे पैदा होती है, जालिम से। ये नफरत ना होती तो उसके खिलाफ खाली फतवे सुन के और शरीयत की मोटिवेशन से काम नहीं होता, नफरत के एक जज्बात पैदा होते हैं, तभी तो लोग हमसे कहते हैं गजा में जो जुल्म हो रहा है मुफ्ती साहब फतवा दो। अब देखो फतवा निकलवा रहे हैं खुद से, क्या ख्याल है, सही है, अच्छा जज्बा ये लोगों में, भाई आप क्यों नहीं दे रहे, दे चुके हैं बहुत से लोग फतवा, बड़े बड़े उलमा हम भी और सब लोग दे चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं बार बार दो बार बार दो, किसी और टॉपिक पे तो नहीं कहते, मुफ्ती साहब बार बार फतवा दो के सूद हराम है, क्यों नहीं दे रहे फतवा, बार बार दो फतवा, मुफ्ती साहब बार बार फतवा दो के इकट्ठी तीन तलाके नाजायज हैं, बार बार, ना 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 भाई, एक कौम पे हम जुल्म होता हुआ देख रहे हैं, जज्बात भड़कते हैं तो एकदम जालिम के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा होते हैं, वो जज्बात उभारते हैं इंसान को, भाई इस पे काम होना चाहिए, जालिम को पकड़ो जाके, मारो उसको, रोको उसको, बायकॉट करो उसका। तो ये काम कौन करा रहा है, नफरत बोझ, समझते हो कि नहीं समझते। और हकीकत है शरीयत में जैसे मोहब्बत के फजाइल है ना, नफरत के भी बड़े फजाइल हैं अगर वो सही जगह पर हो, अगर सही जगह पर हो तो शरीयत में जैसे मोहब्बत के फजाइल हैं ऐसे ही बोलो नफरत के भी हैं। इस्लाम हमेशा मोहब्बत का दर्स नहीं देता, बहुत जगहों पर नफरत और बोझ का दर्स देता है। तभी हदीस में आता है कि अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह, जो अल्लाह की नजर में सबसे कामयाब तरीन लोग हैं ना, जिनको अल्लाह अपने अर्श के साय में जगह देगा, उनमें वो लोग भी हैं जो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करें और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए करें। कुरान क्या कहता है, रुहमाउ अशिद्दाउ अलल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। सहाबा की सिफत बयान की, ये काफिरों पे जो जंग लड़ने वाले काफिर हैं वो मुराद है, जो मैदान जंग में लड़ते हैं मुसलमानों से, उन पे बहुत सख्त है, ये नरम नहीं है, उन पे तरस नहीं आता इनको। और रुहमाउ बैनहुम आपस में क्या है, रहमदिल। जालिम पे तरस आना ये बेमौका है, तभी जो डाकुओं को पकड़ के कूट रहे होते हैं और जो उनको बचा रहे होते हैं ना, मेरा दिल चाहता है बचाने वाले को भी इसी के साथ लिटा के कूटो, ये बेमौका तरस आ रहा है आपको। डाकू पे अगर तरस आ रहा है तो आप, इसका मतलब आपके सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत। ये डाकू पे जब ये, इस डाकू को चाहिए आपको भी लूटे, आपके भी किसी बच्चे को कत्ल करे, शहीद करे, फिर हम देखेंगे कितना तरस आता है आपको उस डाकू पे। मैं न्यू कराची में इमाम था, एक साहब आए, मुझे बच्चा नौजवान, बच्चा तो नहीं था, नौजवान आदमी टाइप का ही पूरा, कहने लगा मुफ्ती साहब ये न्यू कराची में जब डाकुओं को पकड़ के लोग मारते हैं, मुफ्ती साहब ये बहुत ज्यादा मारते हैं, मुफ्ती साहब प्लीज आप बयान करें ऐसे ना मारो। कह रहे उस बेचारे का हाल क्या कर देते हैं ये मार मार के। न्यू कराची में अगर कोई डाकू पकड़ा जाए ना तो बहुत ही उसका हशर नशर करते हैं वो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं बयान करूंगा, डाकुओं को फूलों से मारा करें, प्यार से मारा करें, यूं यूं करके एक यूं चमाट मारा करें डाकुओं को। खुदा के बंदे, डाकुओं ने कितने जब जवान बेटों की लाशें घर में आती हैं जिनको डाकुओं ने मारा होता है, मां बाप पे क्या कयामत गुजरती है। जवान बीवियों के जवान शोहर, जब जवान औरतें बेवा होती हैं, हुआ ना स्वीडन से मियां बीवी का जोड़ा आया इधर ईद के मौके पे और डाकुओं ने मार दिया उस बीवी के सामने उसके जवान शोहर को और एक छोटा बच्चा, वो बच्चा भी अपने बाप की लाश को तड़पता हुआ देख रहा है। क्या गुजरी कि सारी जिंदगी के लिए वो मेंटली वो मुतासिर हो गया, अब सामने अपने बच्चा बाप को तड़पते हुए देख रहा है और बीवी अपने शौहर को तड़पते हुए देख रही है। और इस डाकू पे हमें समझाया जा रहा है कि क्या खाओ। तो डाकू के बारे में मैं फतवा नहीं दे रहा, लेकिन लोगों का जो तरीका है वो यही है कि जैसे तैसे हो इसको मारो जान, लोग ये करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन पब्लिक ऐसा करती है। वजह उसकी है कि पब्लिक के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बोलो है नहीं, पब्लिक कहती है और क्या करें, फिर क्या करें, पुलिस के हवाले करना चाहिए। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस खुद मजबूर है, पुलिस उसको कोर्ट में लेके जाएगी, कोर्ट में कोई गवाही देने के लिए जाता ही नहीं है, क्योंकि जो गवाही देने जाएगा उसको पता है अगला नंबर उसका है, तो पुलिस भी मजबूर है, वो कोर्ट में ले जाएगी। वैसे तो पुलिस भी काफी गुनाह धो देती है उसके ले जाके ना, काफी चित्रौल लगा के वो अपने हाथ मजबूत करते हैं उसके ऊपर, एक्सरसाइज जिस पुलिस वाले ने भी करनी होती है ना, हाथों की चमाटों की, वो शादी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि जब हम पिटेंगे तो फिर हम, वो एक आए था ना मीम आई थी कि एक आदमी सैंडल खरीद रहा है बीवी के लिए, पहले अपने यूं ऐसे ऐसे मार के देखता है, तो दुकान वाले ने पूछा कि ये क्या चेक कर रहा है, कह रहे चेक कर रहा हूं बाद में मुझे ही पड़ेगी ना, तो बर्दाश्त कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा बर्दाश्त। खैर, तो ये है कुव्वत गजबिया या नफरत या बोझ, और भी कुव्वतें हैं लेकिन इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा किरदार इन कुव्वतों का है। तो इन कुव्वतों में बैलेंस, बैलेंस समझते हो, एतदाल। हम अकल से शुरू करते हैं, अकल का एक है बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करना, तभी कुरान बार बार कहता है अफला ताकिलून, तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते। अब मुशरिक लोग, गैर मुस्लिम लोग अकल से बिल्कुल काम लेते ही नहीं है। डार्विन ने उनको बोल दिया हम बंदर से बने हैं, अब भाई बंदर किससे बनाए, बंदर पता नहीं किससे बनाए, वो किससे बनाए, वो एक सेल से बना, अबे ये आंख खुद बहुत कैसे बन गई भाई, ये कैसे हो गई, पागलों वाली बातें कर रहे हो। मालकुम कई फताह कुमून, तुम्हें क्या हो गया, खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करते, कुरान इन लोगों से कहता है। आंख एक बेहतरीन डिजिटल कैमरा है इवॉल्व होके ये। अच्छा मैं बार बार एक बात कहता हूं, एथियस और मुलहिद लोग ना आपको इस जिंदगी के शुरू में तो फंसा देते हैं, ले जाते हैं, लेकिन जो असल सवाल है उसको पी जाते हैं हमेशा। जैसे अहले हदीस लोग जब तीन तलाक की बात आएगी ना, वो घुमाते हैं आपको, घुमाते हैं, जो असल हमारा क्वेश्चन है उसको पी जाते हैं कि हजरत उमर ने हलाल को हराम कैसे कर दिया, یعنی تین طلاق کو ایک قرار دے کر جس کے لیے حلال بیوی تھی اس پہ حرام کر دی، جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی، یہ سیاست تھوڑی ہے، تو دین میں تحریف ہے۔ آپ یہ بولو کہ حضرت عمر نے دین میں تحریف کی اور سارے صحابہ نے ٹھنڈے پیٹوں اس تحریف کو برداشت کر لیا، تو یہ بولو نا، منہ سے پھوٹو نا، آپ کو شرم کیوں آ رہی ہے یہ بولتے ہوئے؟ بولو تاکہ ہمیں پتا چلے آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اہل حدیث بہت گھمائے گا بات کو طلاق کے مسئلے میں، اس بات کا جواب قیامت تک نہیں دیں گے، بلکہ وہ گھمائیں گے تمہارے فلاں دیوبندی نے بھی تین کو ایک کہا، فلاں باب سارے دیوبندی بھی بول دیں، ہماری صحت پہ اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے سب سے پہلے دین کو سمجھائے، تو آپ ہمیں کیا سمجھتے ہو؟ ہم دیوبندی کا ہمارے ساتھ اگر دم لگی ہوئی ہے تو کیا ہم قرآن و سنت چھوڑ دیں گے؟ تو آپ 100 دیوبندیوں کے حوالے بھی دے دو ہم نہیں مانیں گے، آپ میرے شیخ کے حوالے لے آؤ، مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں، مفتی رشید احمد صاحب ہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے، ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے بھائی، ریسرچ ایک چیز پہ ہوتی ہے تو کون مانتا ہے؟ تو گھماتے ہیں باتوں کو، گھماتے ہیں، ایسے ہی ملحد وہ بھی گھماتے ہیں باتوں کو، بدعتی وہ بھی کیا کرتا ہے، بات کو گھماتا ہے۔ آج ایک صاحب آئے وہ کہنے لگے کہ میں نہیں مانتا صحابہ کو، اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کے نام ماننے سے پتہ ہے ہوگا کیا؟ آپ بولو میں قرآن کو نہیں مانتا، سیدھا سیدھا، یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں صحابہ کو نہیں مانتا۔ کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا بھائی یہ قرآن ہمیں پہنچا کہاں سے ہے؟ صحابہ سے پہنچا ہے، اور کس نے پہنچایا؟ یہ ایک جمع غفیر ہے، اگر ہم کہیں دو چار افراد نے پہنچایا ہے تو دو چار افراد کا پہنچایا ہوا تو مشکوک ہوتا ہے، اس پہ تو پھر کیسے آپ کو اطمینان ہوگا؟ دو چار آدمیوں کی خبر پہ 100% یقین تھوڑی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی سکا ہوں ان سے غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ تو جمع غفیر سے قرآن پہنچا ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں تحریف کا کوئی امکان سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ متواتر خبر میں تو کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ ابو بکر کو نہیں مانتے، کتنے سوال ہوں گے، نبی نے اپنے مسلح پہ کیوں کھڑا کیا ابو بکر کو؟ اتنے سارے سوالات ہیں، لیکن باطل کیا کرے گا؟ وہ ہمیشہ بڑے بڑے سوالات کو پی جائے گا اور الٹا آپ پہ اعتراضات، چھوٹے چھوٹے اعتراضات کرنا شروع کر دے گا، باغ فدق یہ ہو گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا اور وراثت نہیں ملی تھی، یہ باتیں گھما گھما کے کہاں لائے گا؟ اب انہی باتوں میں لائے، تبھی یہ خوب سمجھ لو، جب بھی کسی باطل سے بات ہونا اس کے سوالات کا جواب نہ دیا کرو، اس کی کوشش ہوتی ہے آپ کو اپنے سوالات میں الجھائے، آپ اپنے سوالات اس سے پوچھا کرو، آپ اپنے سوالات پوچھا کرو اس سے۔ اس کی مثال ایسے جیسے وہ جو چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کرا، جو منجن بہت عرصہ بیچا ہے، تو اس کا جواب دینے کے بجائے آپ پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا تاویل ہے؟ اگر آپ تاویل نہیں کرتے اور کہتے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، تو آپ ان کو کافر کیوں نہیں بولتے؟ پھر ان کو بھی کافر بولو، اور جو ان کو مسلمان بول رہے ہیں ان کو بھی کیا بولو؟ کافر بولو۔ پھر آپ تحریک چلاؤ، جیسے ختم نبوت کے لیے علماء نے تحریک چلائی، کورٹ سے قانون پاس کروایا کہ مرزا غلام احمد بھی کافر اور جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر، پھر آپ ایسی تحریک چلاؤ کہ جو مانتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے کلمہ پڑھایا، اشرف علی رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، اور ان کو پھر بھی مسلمان بھی کہتے ہیں اور ان کو فالو بھی کرتے ہیں، تو یہ سارے دائرے اسلام سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ تو باطل کے سوالات کا جواب دو گے نا، وہ تو ہمیشہ وہ آپ کو ڈیفنس میں لے کر آئے گا، اس سے سوال پوچھا کرو گے، یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، ہم نے تھوڑی دینا ہے۔ ہم جب میڈیشن کا کورس کر رہے تھے نا سالسی کا، تو ایک بڑی زبردست چیز ہمیں بتائی گئی، میڈیٹر ہوتا ہے نا جو دو پارٹیوں میں سلو کرواتا ہے، تو ایک اس کورس میں بڑی زبردست ایک چیز ہمیں بتائی گئی، علماء کا کو بہت دفعہ موقع ملتا ہے نا دو پارٹیوں میں سلو کرانے کا، اس میں جو سب سے پوائنٹ کی چیز ہم نے سمجھی ہے، انہوں نے کہا کبھی بھی کسی فریق کی طرفداری نہ کرنا، یعنی یہ شو بھی نہ کرنا کہ ہم اس کی طرف ہیں، اگرچہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے، یہ حق پر ہے، کیونکہ آپ جج نہیں ہیں، آپ کو ایز اے جج نہیں بلایا گیا کہ فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط، آپ کو سلو کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو پہلے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ دو پارٹیاں ہمارے پاس آئی ہیں، مثال میاں بیوی آ گئے جھگڑا کر کے، یا چاچا اور بھتیجوں کی وراثت کا جھگڑا ہے، تو پہلے آپ نے ان سے فیصلہ کروانا ہے۔ تین چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں اس میں، آپ لوگ بھی یہ سیکھ لیں جو خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بعض دفعہ خاندانوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ تین پوزیشن اپنی واضح کریں کہ میں کیا، میرے پاس کس طور پر آئے ہو، یا تو مجھے جج بنا کے آئے ہو کہ میں فیصلہ کروں گا، یا مجھ سے مفتی کے طور پہ پوچھنے آئے ہو کہ شریعت کا حکم بتا دوں، یا مجھ سے سلو کروانے آئے ہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تینوں چیزیں کیا ہیں بولو؟ الگ الگ ہیں۔ अगर दोनों पार्टियां मुझे कह देती है ना मुफ्ती साहब हम आपको एज ए मुफ्ती आपके पास आए हैं कि आप फतवा दें, तो फतवे में फिर सीधा सीधा जो शरीयत का हुक्म है वो उनको बयान कर दिया जाता है, बयान कर दिया जाता है। ये लो भाई, अब उसमें जो जो सिचुएशन बताएगा उसको उसके हिसाब से फतवा दे दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर शौहर ने कहा कि मैंने तलाकें नहीं दी हैं, बीवी कह रही है मैंने दी हैं, तो हम बीवी से कहेंगे आप सवाल लिख के दो, बीवी कहेगी मैंने अपने कानों से तीन तलाकें सुनी है, तो मैं क्या जवाब लिखूंगा? अगर आपने अपने कानों से सुनी है तो आप अपने शौहर पे हराम हो गई, ये लो फतवा। वो कहेगा मैंने तो नहीं दी, हम कहेंगे फतवा लिख के, वो कह रहे हैं अल्लाह की कसम मैंने नहीं दी है, हम कहेंगे अगर आपने वाकई नहीं दी है तो ये आपकी बीवी है, ये लो फतवा। ठीक है ना, फतवा क्या है? जो सवाल है उसके हिसाब से शरीयत का हुक्म बोलो बता दिया उसको। तो मैं उनसे पहले पूछता हूं, भाई आप मुझे मेरी पोजीशन क्या है, एज ए मुफ्ती आए हो, अच्छा विरासत में झगड़े चल रहे होते हैं तो वो आते हैं मेरे पास, मैं कहता हूं भाई एज ए मुफ्ती तो ये विरासत का ये मसला है, अब्बा का इतना हिस्सा, अम्मा का इतना हिस्सा, फलाने का इतना हिस्सा, डिमकाने का इतना हिस्सा। अब वो कहते हैं हमने बहन का हिस्सा दे दिया है, एक मिसाल दे रहा हूं, और ये मुकर गई है कि नहीं दिया, तो मैं कहता हूं फतवा चाहिए, तो फतवा ये है कि भाई अगर गवाह हैं तो ठीक है, नहीं है तो वगैरह वगैरह, इस तरह करके जो भी फतवा है, और उसको बता दिया कि अगर आपने दे दिया है तो क्यामत के दिन आप, यानी झूठ बोल रही है ना, अगर विरासत लेके मुकर गई है तो आप मुजरिम होगी, जो भी इसके हिसाब से शरीयत का हुक्म है, जिसको कहते हैं दयानत, कि आखिरत के हिसाब से ये बनता है इसमें। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप जज के तौर पर, तो फिर हम उससे गवाह मुतालबा करते हैं, फिर मैं कहता हूं भाई मेरी हैसियत एज ए एक जज की हैसियत है, तो जज की हैसियत में तो भाई अगर आपने किसी पर कोई दावा किया है आप गवाह लेकर आओ, अगर आपके पास गवाह नहीं है तो जिसके खिलाफ दावा किया है वो कसम उठाए, अगर वो कसम नहीं उठाता या वो कसम उठा लेता है लेकिन उससे पहले वो गवाह पेश कर देता है, तो जो गवाह पेश करेगा उसके हक में फैसला कर दिया जाए। जज का यही काम होता है ना, मुफ्ती का काम होता है वो बताए कि हकीकत पे बताए कि हकीकत में जो है भाई उसके हिसाब से ही है, जज का काम होता है हकीकत नहीं देखता, जज कहता है मैं आलिमुल गैब नहीं हूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने तीन तलाकें दी और मुकर गया, बीवी ने अपने कानों से सुनी है, मुफ्ती के तौर पर फतवा लेंगे हम बीवी को, आप हराम हो, जज बना के फतवा लेंगे ना हमसे, जज बना के फैसला करवाएंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे? भाई आपका दावा है, दावा है, आप गवाह लेकर आओ, औरत से हम कहेंगे, वो कहेगी मेरे पास गवाह नहीं है, तो हम शौहर से कहेंगे आप कसम उठाओ, सॉरी मुद्दई गवाह पेश करता है, अगर गवाह ना हो तो कसम उठवाई जाती है मुद्दा आले से। तो अब शौहर अगर तो औरत मुद्दई है सूरत में ना, कि हम उससे कहेंगे गवाह लेकर आओ, तो गवाह नहीं लेकर आएगी, हम शौहर से कहेंगे भाई कसम उठाओ कि मैंने नहीं दी है, वो कहेगा मैं कसम उठाता हूं मैंने नहीं दी, हम कहेंगे ये आपकी बीवी है ले जाओ उसको, ये जज बन के क्या है? अब मुफ्ती कह रहे हैं कि आपकी बीवी नहीं है, मुफ्ती उस औरत को कह रहे हैं कि आप शौहर से क्या करो, जान छुड़ाओ, क्योंकि आपने अपने कानों से सुना है हमारे फैसले की वजह से आप शौहर के लिए हलाल नहीं हो गई हो, लेकिन जज क्या कहेगा? जज कहेगा भाई हमें क्या पता, ऐसे तो कोई भी औरत उठ के कहे, तो ये दो फैसले मुख्तलिफ हो। तो सालिसी का काम क्या होता है? सालिसी का काम ये होता है, मीडिएटर जो होता है ना उसका काम ये होता है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल, वो क्या करता है आपके जो झगड़े हैं उसमें उसका काम है झगड़ा खत्म करना। मिसाल के तौर पर एक दफा मेरे पास एक पार्टी आई, उसने कहा कि इन्होंने मेरे 2 लाख रुपए खाए हुए हैं या 10 लाख खाए हुए हैं मुझे याद नहीं, और वो कह रहे हैं मैंने नहीं खाए। मैंने कहा मेरी हैसियत मुफ्ती की है या जज की है, एक बनाना, एक तरह से फैसला करूंगा, ये नहीं कि पहले जज बन के फैसला करवाओ फिर मुफ्ती बन के फैसला करवाओ फिर जोड़ तोड़ करवाओ, ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा आप जो है ना फैसला करें, हमारे दरमियान झगड़ा बहुत हो रहा है, तो मुझे अंदाजा हो गया इनका झगड़ा बहुत हो रहा है, ये मैं आपको बयान से हट के थोड़ा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग भी जो खानदान के बड़े हैं वो थोड़ा सा मसाइल हल करना सीखें। लोग सालिस बनके ना और लड़वा देते हैं और मामला क्या कर देते हैं खराब। तो मैंने फिर उस पार्टी को बुलाया जिसने दावा किया था इसने 10 लाख खाए, मैंने कहा 10 लाख तो इसका बाप भी नहीं देगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है? कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में होगा ये कि मुर्गी छुड़ाने के लिए भैंस की कुर्बानी देनी पड़ेगी तुम्हें, 10 लाख से ज्यादा तुम वकीलों को खिला दोगे, शुक्र करो ये मेरे पास आ गया है आपका केस लेके, तो 10 से कुछ कम में आ जाओ आप, मुझे नहीं पता आपने इसको 10 दिए हैं कि नहीं दिए, ना मैं आपसे गवाहों का मुतालबा कर रहा हूं, कुछ भी नहीं, आप बताओ, झगड़ा खत्म करना है ना। उसको मैं किसी तरीके से नीचे लाया, 5 पे 4 पे, मैंने कहा यार आपने दिए होंगे लेकिन गवाह तो नहीं है ना आपके पास, तो कहीं भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। और तो अब उसको लाए हम 5 पे, इधर जो बंदा था मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख भाई तूने अगर लिए है ना, ठीक है इसके पास गवाह नहीं है, लेकिन शरीयत इसको ये हक देती है कि ये तेरे घर पे आके खड़ा हो जाए, क्योंकि इसको पता है कि इसने दिए हैं। जज अगरचे इसको फेवर नहीं देगा, सॉरी इसको फेवर देगा, उल्टा कह दिया मैंने, जज इसको फेवर नहीं देगा, इसके पास गवाह नहीं है, लेकिन शरीयत इसको, किसी भी मुफ्ती के पास जाएगा, मुफ्ती कहेगा तेरे पैसे जिस तरह से चाहे निकलवा ले, तू उल्टा लटका के निकलवा ले, चितवाल लगा के निकलवा ले, इसकी बाइक चोरी कर ले, तो अब तूने लिए नहीं लिए हमें नहीं पता, लेकिन ये तेरी जान छोड़ेगा नहीं, ये नहीं छोड़ेगा तेरी जान। तो कुछ दे के जान छुड़वा ले, क्या ख्याल है? जैसे मैंने खजूर का बिजनेस किया था, चंद लाख रुपए लगाए, 50,000 का नुकसान होके मुझे ये पता चल गया कि मेरे करने का नहीं है, तो 50,000 में अगर ये नॉलेज मेरे पास आ गई कि मुझे खजूर का बिजनेस क्यामत तक कभी भी नहीं करना, तो ये नुकसान नहीं है, बहुत फायदे की चीज है। और ये फायदे मैं लोगों को भी शेयर करता रहता हूं, भाई ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए के कंटेनर पहले से बुक कर लिए होते हैं लोगों ने मुनासिब कीमतों पे। खैर, तो मैंने वो उछल रहा है ना, दाएं बाएं उछल कूद, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे 10 लाख जो है ना वो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा इसको, मैंने जब लिया ही नहीं है मैं कहां से दूं। मैंने कहा देख भाई, मेरे नहीं ये पैसे, तू मेरे पास आया है ना मसला हल कराने के लिए, दे दे, कुछ देर के जान छुड़ा ले, क्योंकि मैंने पहले केस की नौइयत समझ ली ना। तो मैंने कहा मुझे कोई गरज नहीं है वो आपके घर पे आके उल्टा लटक के पैसे निकलवाए, बाइक छीने आपकी, कुछ भी करे, मैं किसी के काम नहीं आऊंगा, न्यूट्रल बन के, भाई हमारा मसला नहीं है ये। अच्छा यू समझने लगता है मुफ्ती साहब की दिलचस्पी है इसमें, भाई मेरी दिलचस्पी नहीं है, लड़ो यहां बैठो, मैंने कहा अभी लड़वाता हूं आप दोनों को, अगर पिस्टल चाहिए गार्डों से लेकर राइफलें देता हूं, मार दो एक दूसरे को, मुझे कुछ भी नहीं है, ना तुम मेरे चाचे लगते हो ना तुम मेरे मामे लगते हो, ये सालिस को चाहिए बताए कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई इसमें, आपके फायदे के लिए फी सबीलिल्लाह मैं एक टाइम निकाल रहा हूं, ये नहीं छोड़ेगा आपको, अकेले में बिलाकर उसको बोला, ये इसका बाप भी निकलवाएगा, बिलाकर वो आ गया तमीज से ना, तो मुखमुखा हो गया, लिख दिया और मसला हल हो गया उनका, खत्म हो गई बात। एक खातून आई, कहने लगी मेरा शौहर ये, मेरा शौहर वो, मेरा शौहर फलाना, मेरा शौहर डिमकाना, वो इतने दुखड़े उन्होंने सुनाए, मुझे लगा इसका शौहर को मैं जबा कर दूं ले आके। तो मैंने उस खातून से कहा कि मैं एक शर्त पे फैसला करूंगा कि आप भी तहरीर लिख के दो कि मुफ्ती साहब जो फैसला करेंगे वो मैं मानूंगी, अगर मैंने नहीं माना तो मुफ्ती साहब को परमिशन है मेरा नाम लेके यूट्यूब पे मुझे रुसवा कर दें, फिर सोशल मीडिया पे डाल दें ये औरत 2 नंबर है, और आपका शौहर भी ये लिख के दे कि हमने फैसला मुफ्ती तारिक मसूद साहब से करवाना है, हमें उन पे एतमाद है, और उन्होंने जो फैसला किया अगर मैंने नहीं माना तो मुफ्ती साहब को ये राइट है कि अपने चैनल पे मेरा नाम और तस्वीर डाल के बदनाम करें, ये 2 नंबर आदमी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि होता पता है क्या है, लोग जाते हैं, एक से फैसला करवाया आपके फेवर में नहीं है, दूसरे मुफ्ती के पास चले गए, उसके फेवर में नहीं है, तीसरे के पास चले जाए, फिर होता यह कि जब कोई पार्टी में से एक समझ रहा होता है मेरा मुझे कहीं से भी फेवर नहीं मिला, फिर कोर्ट में जाता है वो। तो जब मैंने ये कहा ना, मेरा दिमाग खाया हुआ था ना, बार बार खातून भी और वो बंदा भी बार 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 बार, मैंने कहा लिख के दो, एक तरफा बात सुन के मैं कभी फैसला नहीं करूंगा, मेरा कोई झगड़ा नहीं है आप दोनों से, लिख के दो। बच्चों का फड्डा चल रहा था मेंटेनेंस वगैरह का, तो वो खातून ने लिख के दे दिया। जब मैंने रابطہ किया मर्द से तो पता चला खातून ने केस भी किया हुआ कोर्ट में। उस मर्द ने कहा फिर ठीक है मैं लिख के दूंगा, लेकिन कोर्ट से केस खत्म करें। मैंने खातून से कहा कोर्ट से केस खत्म, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये डबल गेम नहीं चलता, कोर्ट में भी केस किया हुआ है कि यहां से नहीं हुआ तो वहां से, ये डबल गेम नहीं चलता। मैंने कहा इतना हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, तो आप अपना मसला खुद हल करो जाके। तो सालिसी में अपना टाइम कभी वेस्ट ना किया करें। जब तक हमारी मस्जिद के पुराना फड्डा चला था तो हम किसी मुफ्ती बाहर से किसी, मैं खुद भी इसलिए नहीं था कि मेरे पे छाप न लग जाए कि फलां पार्टी को फेवर कर रहे हैं, तो मैंने कहा घर का मसला है तो बाहर से हल होगा। मुफ्ती को लेकर आए हम, तो उन मुफ्ती साहब ने लिखवाया दोनों पार्टियों से, वो लिख के नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा जाओ हम नहीं हल करते आपका मसला, ठीक है ना। तो खैर ये कहां से काम बात चली गई, बहुत ज्यादा मैं दाएं बाएं चला गया आज, लेकिन मेरे से जब फैसला करवाने आओ तो ये सोच के जहन में रखा करो कि फैसले में लिख के दिया जाएगा और मेरे पास सोशल मीडिया की ताकत भी है। मैं ये भी लिखवाता हूं आजकल कि उस फैसले को नहीं माना ना तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन गलत है, और फिर अगर किसी ने दूसरे को सोशल मीडिया पे बदनाम करने की कोशिश की तो फिर मैं अपने चैनल पे उसको बदनाम करूंगा। देखो ये मेरे पास आए थे, ये फैसला किया था, और ये क्योंकि लोग एक दूसरे की इज्जतें उछाल रहे होते हैं आजकल, खासकर मियां बीवी के झगड़ों में तो बहुत। और याद रखो, कसम उठा के कह सकता हूं, कभी भी मियां बीवी के झगड़ों में ना यकतरफा बात सुन के फैसला ना किया करो, चाहे कितना आपको कोई मजलूम लग रहा हो। मर्द अगर अपनी बीवी पे कितने इल्जाम लगा रहा है, ये ऐसी थी, ये वैसी थी, खुदा की कसम मैं ये 30 साल हो गए मुझे ये झगड़े निपटाते हुए, मैं मुतासिर हो जाता हूं। बाद दफा मर्द आके ऐसे जुल्म की दास्तानें बयान करता है, ये हो गया, मुझे लगता है वाकई इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वाकई बहुत जुल्म हुआ है, और इसकी बीवी बहुत दो नंबर है, यानी आदमी तैश में आ जाता है। लेकिन जब दूसरी पार्टी का बयान सुनता है तो कहता है नहीं भाई, मामला बिल्कुल उलट है। इसी तरह बाद दफा औरत के आंसू देख के, चीखना देख के, उसकी बातें, इसने 20 साल से खर्चा नहीं दिया, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसके लड़कियों से ताल्लुकात, ये फौज फिल्में देखता है, ये फलानी से ताल्लुक, और देखे मैं सबूत पेश करती हूँ, ये चैट देखो, ये चैट देखो, ये फलाना आदमी कहता है इससे ज्यादा दो नंबर आदमी मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। डीसीओ के दफा के मैं मुतासिर हुआ हूं, लेकिन जब मर्द को बुलाया तो कहानी बिल्कुल उल्टी निकली। इसलिए भाई ये यकतरफा बात सुन के ये फैसला कर लो, कहीं भी कभी कोई राय कायम नहीं करनी है, कभी भी कोई जिस पे इल्जाम लग रहा है जब तक उसको बुला के क्लियर नहीं करते कभी भी नहीं। एक दफा यहीं पर केस आया, खातून ने कहा कि मेरा मियां सामने इतना तरस आया, मैंने जामे से भी 2-3 मुफ्तियों को बुलाया, यार इस खातून का मसला हल करो। उन्होंने, वो सीनियर मुफ्ती थे, उन्होंने बोला भाई इसके शौहर को बुलाए बगैर नहीं होगा मसला हल। यार जब शौहर आया है ना तो पहले तो अपनी बच्चियों को देख के फूट फूट के रोने लगा, 5 साल बाद उसने अपनी बेटियों को देखा है, औरत ने 5 साल से अपनी बेटियों को शौहर से नहीं, उसके बाप से नहीं मिलाया, 5 साल मिलने नहीं दिया, और उल्टा बच्चों का जहन खराब किया हुआ था कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलता नहीं है, यानी जुल्म उल्टा ये कर रही हो कि बच्चों को मिलने नहीं दे रही, और जब मिला है तो कह रही हो देखो 5 साल बाद आया है, हालांकि वो मिलने इसने ही नहीं दिया। तो ऐसी उल्टी कहानियां मर्द भी कर रहे होते हैं, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा। तो जब सिचुएशन में जाता है आदमी डेप में कुछ और ही निकल रहा होता है। तो इसलिए कुरान ने बार बार एतदाल 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 बैलेंस ये बहुत ज्यादा हुक्म दिया। खैर हम टॉपिक की तरफ आते हैं, तो अकल का एक इस्तेमाल क्या है, अकल बिल्कुल ही इस्तेमाल ना की जाए जैसे एथियस लोग करते हैं। ये क्या करते हैं, पूरी कहानियां सुना देंगे आपको कि ये कायनात की इब्तदा कैसे हुई और ये पहले सेल कैसे बना, फिर इवॉल्व होते होते ये सब कुछ बन गया, जो असल सवाल है ना, जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। एक शायर तपा हुआ था, पहले जमाने में कबूतर महबूबा और माशूका के खत लेके आते थे, तो बहुत अरसा हो गया माशूका का खत नहीं मिला इसको, कोई कई सालों के बाद जाके खत आया तो ये बड़ा खुश के यार आज तो महबूबा ने कई सालों के बाद खत लिखा है, बड़ी मोहब्बत की बातें की होंगी। तो उसमें लिखा होता भाई बाद सलाम व तस्लीम, मर्ज है कि बहुत अरसे से आपकी खैरियत मतलूब, खुदावंद करीम से खैरियत मकसूद, वगैरह वगैरह करके जो मोहब्बत की बात थी ना, जो आने वाली थी, आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है, वो कबूतर के पंजों से घिस चुकी थी, और आखिर में लिखा था वस्सलाम। तो इसको गुस्सा आया, जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। तो ये तपावा शायर था, एक दिन इसके अपनी महबूबा पे नजर पड़ गई। अच्छा जब नजर पड़ती तो आधा नकाब नजर आता इसको, तो इसको ये तप चढ़ रही थी, या तो जलवा ही ना कराती अपना, न देखते ही नहीं हम घुसन है या नहीं है तो हम आशिक ही ना होते, और अगर जलवा कराना है तो तमीज से पूरा जलवा कराओ भाई। तो ये तपावा शायर है ना, जो हर चीज आधी आधी आ रही है इसके पास। तो कहता है कि ये कहता है कि लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है, लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है, कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाब आधा। अब उसको उस शेर से मिलाएं, जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। लगता है मेरे महबूब की एक आंख गायब है, कि उसने जब भी पलटा है तो पलटा है नकाबा था। कहता है लगता है दूसरी आंख ही नहीं है इसलिए दिखाई नहीं रही है वो। जब शेर व शायरी चली रही है तो पूरा कंप्लीट ही कर दूं। इब्तदाए इश्क में दिल हुआ यूं खराब आधा, कि जैसे सीख पे चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। आधा कबाब जल जाए ना तो वो आधा ना खाने का है ना फेंकने का है। तो कह रहा हमारा इश्क की इब्तदा ऐसे हुई है कि आंख एक नजर आ रही है, दूसरी नजर आ नहीं रही है, कबूतर खत लेके आ रहा है तो बाद सलाम व तस्लीम और खुदावंद करीम से खैरियत मतलूब, खैरियत मकसूद, वो सारी डिटेल है, जो मतलब की इबारत थी वो कबूतर के पंजों से क्या हो गई है, घिस गई है। तो जो एथियस लोग हैं, मुलहिद लोग हैं, जो मतलब की जो असल बात तो खुदा के वजूद की सबसे बड़ी दलील है कि भाई पहली दफा किसने बनाया, उसको पी जाते हैं, बनने के बाद के प्रोसेस को बयान करना शुरू करते हैं। एक्चुअली ये बंदर से बना, अबे बंदर किसने बनाया, बंदर कैसे बन गया, तो बंदर फलाने से बना है, वो कैसे बन गया, वो उससे बना है, वो कैसे बन गया, वो एक सेल से बना है, भाई सेल कैसे बन गया, जिंदगी कैसे आ गई यार, सेल तो इतनी एक पेचीदा चीज है कि खरबों साल में भी ऐसा हुस्न इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अगर हुस्न इत्तेफाक हो गया तो किस चीज से हुआ है ये इत्तेफाक, वो चीज कैसे बनी, यहां तक कभी पहुंचते ही नहीं है। बस एक इन्होंने की सुई आके अटक गई है कि अगर ये कायनात हमेशा से नहीं हो सकती तो खुदा हमेशा से कैसे है फिर। भाई वो खुदा है, खुदा के बंदो ये कायनात है, हम खुदा को थोड़ी जानते हैं, हकीकत को, कायनात को तो हम जानते हैं, खुद से वजूद में नहीं आ सकती। आप कैसी बेअकली की बातें कर रहे हो, ये कायनात ढुंग से खुद से वजूद में आ गई, तो ये क्या है, अकल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं। ये मुल्हिद लोग करते हैं, ये बुत परस्त लोग करते हैं। तो जो बुत हैं, तुम अपने हाथों से उसको तराश रहे हो, अलहुम अर्जुलुई यमशून बिहा, इनके पांव हैं जिससे ये चलते हैं, अमलहुम आईदी यबतशून बिहा, ये अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते, मक्खी इनसे कोई मिठाई छीन के भाग जाए उसे छुड़ा नहीं सकते, मक्खी बना नहीं सकते। और कुलिदरूहुम कुलिदरू शुरका अकुम, इनको पुकारो तुम, ये तुम्हारी पुकार को सुनेंगे नहीं, जवाब देना तो दूर की बात। सवा उन अलैकुम अदउतुमूहुम अम अंतुम सामितून, तुम इनको पुकारो या चुप बैठे रहो, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी लॉजिक की बात है, ये कैसा खुदा है, चार बुतों पे एक फ्री मिल रहा है आपको। बाकायदा रेट होते हैं बुतों के, जो इनके खुदा है उनके रेट होते हैं। मैं थाईलैंड में होलसेल मार्केट में गया हूं, यहां बहुत सस्ते हैं, तो होलसेल के हिसाब से रेट क्या है, सस्ते हैं। तो ये क्या है, अकल सिरे से इस्तेमाल हो ही नहीं रही। जब इनको कहा जाता है भाई क्या कह रहे हैं, अकल का ताल्लुक नहीं है, ये ऊपर की चीजें हैं, इनका रिलेशन है खुदा से, जो असल भगवान है उससे इनका रिलेशन है, उसने इनको इख्तियारात दिए हैं। तो कुरान कहता है मांजल्लाहु बिहा में सुल्तान, क्या दलील है कि अल्लाह ने इनको इख्तियारात दिए हैं, इसकी क्या दलील है, कोई वाज़ह दलील तो लेकर आओ, कोई आसमानी किताब में लिखा हुआ है, कहां है, अल्लाह क्यों देगा इनको इख्तियारात। अल्लाह कुरान में कहता है तुम अपने गुलाम को अपनी प्रॉपर्टी में शरीक नहीं करते, मैं इन पत्थरों को अपनी कायनात में शरीक कर लूं, क्या तुम अपने गुलाम को प्रोटोकॉल नहीं देते इतना कि अपने खादिम को अपनी प्रॉपर्टियां देना शुरू कर दो, और मैं इनको अपने साथ खुदाई में शरीक कर लूं। तो यह है अकल सिरे से इस्तेमाल ना करना, कुव्वत है ना अल्लाह ने इंसान को। और एक है अकल का गैर जरूरी इस्तेमाल, गैर जरूरी, जहां नहीं इस्तेमाल करनी वहां भी, एक है सलाहियत दी है फायदा नहीं उठा रहे, जैसे भूख एक अल्लाह की नेमत है, फायदा ही नहीं उठा रहे, खा ही नहीं रहे, मर जाओगे आप। एक है भूख का नाजायज फायदा, आपको भूख बहुत लग रही है तो आप ये समझे कि मेरा पेट नहीं है, ये लालू खेत है, ये सही है ना भाई, भूख भी महदूद है, पेट भी क्या है, महदूद है। आपने तीन टाइम से खाना नहीं खाया तो अब ये नहीं हो सकता कि तीन टाइम का खाना एक ही टाइम पे खा के पेट भर लो। मैं बचपन में सोचा करता था जो एक हफ्ता भूखा रहता है वो तो फिर 7-21 टाइम का खाना खाता होगा, तो मेरे भाई ने बताया, उन्होंने बोला पेट इतना ही रहता है, वो इतना बड़ा नहीं हो जाता, तो जितनी गुंजाइश है उतना ही खाएगा, तो इससे ज्यादा नहीं खा सकता, तो आप खाए चले जाओ, खाए चले जा रहे हो। तो एक है अकल का इस्तेमाल ही ना करना, एक है अकल का इस्तेमाल करना ऐसी जगह पर जहां अकल खुद कहती है कि यहां इस्तेमाल नहीं करना। इसकी मिसाल है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दे दी हमको पैनाडोल, डॉक्टर के अकल ये कहती है कि दर्द सर का इलाज जो है हकीम या डॉक्टर के पास है, अकल यही कहती है ना, यहां तक अकल का इस्तेमाल ठीक है। आपके सर में दर्द हुआ, आप जा रहे हो मैकेनिक के पास कि आपने चूंकि मेरी गाड़ी बहुत जबरदस्त ठीक की थी, मेरी खोपड़ी भी आप ही ठीक करेंगे, प्लग पाने से आपने क्या करना है ये अंकल को बड़ी ऐसी आती है मेरे साथ, जिंदा दिल अंकल है ये माशाल्लाह। तो आपकी गाड़ी किसी मैकेनिक ने ठीक की थी, आप उसी मैकेनिक के पास चले गए कि भाई मेरी खोपड़ी भी नट बोल्ट लेके क्या कर दो, स्क्रू ढीले हो गए हैं। बार दफा माँ बाप बच्चे को ताना दे रहे हो ना तुम्हारे ऊपर के स्क्रू ढीले हैं, तो आप चले गए, आपने कहा यार स्क्रू टाइट तो उसने किया था, वो इलेक्ट्रिशियन आया था हमारे स्क्रू टाइट करके गया है प्लग उसके बटनों के, तो आप मेरे स्क्रू क्या कर दें, टाइट कर दें, ये बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। लेकिन आपने अकल इस्तेमाल की, आपने बोला भाई हर फील्ड के माहिरीन होते हैं, मेडिकल साइंस डॉक्टरों का और हकीमों का शोबा है, तो किसी अच्छे हकीम या किसी अच्छे डॉक्टर के पास, सर दर्द का तो आजकल हकीम भी पैनाडोल ही दे रहे होते हैं, तो आप चले जाएं किसी अच्छे डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर आपका टेस्ट करेगा जो भी करेगा, उसके बाद आपको दवा देगा। अब उस डॉक्टर ने आपको लिख दी 2 गोली पैनाडोल, फौरी तौर पर खा लें, फिलहाल ये दर्द तो ठीक हो, फिर हम बाद में गौर करते रहेंगे ये हो क्यों रहा था, शादी की थी आपने या शादी नहीं हो रही। बाद दफा सर दर्द होता है शादी ना होने की वजह से, बाद दफा होता है शादी होने की वजह से। अभी मैं सऊदी अरब में था ना, तो वो इफ्तिताह कर रहा था वो होटल का, हमारे कोई दोस्त थे ओपनिंग के लिए बुलाया उन्होंने, तो वो मेरे पास लोग मिलने आ रहे हैं ना, बहुत से कह रहे हैं मुफ्ती साहब मेरी शादी के लिए दुआ करें, मेरी शादी के लिए दुआ करें, बहुत से लोग कह रहे थे। तो मैं उनको दुआ देता, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको, तो वो समझ रहे मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह आपकी शादी करे, हालांकि मेरी नजर में इसका मतलब यह था अल्लाह आपको खुश रखे। इसके दोनों मतलब निकलते हैं, यानी जिसके लिए शादी बेहतर है हो जाए, नहीं बेहतर है तो क्या हो। तो मैं सबको यही दुआ, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको। तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि मैं दुआ सही भी दे रहा हूं या गलत दे रहा हूं दुआ इनको। फिर मैंने कहा हम तो यही दुआ करेंगे खुश रखे, बाकी अल्लाह की मर्जी के, उस खुशी किसमें इसकी। तो मुझे वो लतीफा याद आ जाए, खातून अपने शौहर का सर दबा रही थी कि शादी से पहले भी आपको कोई सर दबाता था, उसने कहा होता ही नहीं था दर्द शादी से पहले, दबाने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपने क्या किया, आप डॉक्टर के पास चले गए, अकल का इस्तेमाल किया आपने, ये बिल्कुल सही काम किया आपने कि आप डॉक्टर के पास चले गए, शरी मसला पूछने के लिए डॉक्टर या इंजीनियर के पास जाने के बजाय मुफ्ती के पास चले गए, और गाड़ी आपकी खराब हुई तो किसी इंजीनियर या मुफ्ती के बजाय मैकेनिक के पास चले गए। ये अकल का बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है, इतना जरूरी है, इतना इस्तेमाल क्या है, जरूरी है, इतना भी नहीं करोगे पागल हो जाओगे, उल्टे काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन डॉक्टर ने जाके, डॉक्टर भी अच्छा है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, तजर्बेकार भी है, ये भी नहीं कि अभी नया नया मार्केट में आया है, सफेद दाढ़ी है उसकी, बहुत एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में वो सर्जन या जनरल फिजिशियन के तौर पे बैठता है, सारी दुनिया को एतमाद है। अब उसने आपको लिख के दिया पैनाडोल। अब आप कह रहे हो डॉक्टर साहब मेरी अकल नहीं मानती है, मेरी अकल बोलो नहीं मानती, मुझे कायल करें कि अभी पैनाडोल में ऐसी क्या चीज है कि वो मेरे पेन को ठीक कर देगी। तो डॉक्टर बता रहे हैं देखें इसमें ये केमिकल है, इसमें ये ड्रग होता है, ये क्या करता है पेन को रिलीज करता है। डॉक्टर साहब ये केमिकल पेन को रिलीज करता है, इसका क्या सबूत है? अब डॉक्टर गूगल पे निकाल निकाल के तहरीरें आपको पकड़ा रहा है। आप कह रहे हो डॉक्टर साहब मुफ्ती साहब का मैंने बयान सुना है, हर काम में अकल इस्तेमाल करो, मैं अंधी तकलीद नहीं करूंगा मैं आपकी, मैं क्या करूंगा अकल, मुझे रेफरेंसेस के बगैर मेरा गुजारा नहीं, मुझे रेफरेंस दो कि ये आपने कहां से निकाला है। तो डॉक्टर ने गूगल से वो केमिकल निकाल दिया। डॉक्टर साहब ठीक है मान लिया, पहली बात ये साबित करो ये रिसर्च सही भी है, ये अमेरिका के कौन से डॉक्टरों की रिपोर्ट है? हो सकता है गूगल में तो एक हर आदमी मंजन बेच रहा है ना। डॉक्टर ने निकाल के दिखा दिया, 50 डॉक्टरों के फोन करवा दिए, वो लैब है वहां पर, रिसर्च सेंटर है अमेरिका की बड़ी मुस्तनद और ऑथेंटिक वगैरह वगैरह पूरी। आपने कहा चलो ये भी मैंने मान लिया कि भाई ये वाकई ये तहकीक जो है ये हो गया, लेकिन ये भी तो बताओ कि ये केमिकल इसमें है भी कि नहीं है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा इसमें पैनाडोल में ये वाला केमिकल जो पेन को रिलीज करता है ये है भी कि नहीं है, ये भी तो बताओ। डॉक्टर कहेगा भाई ये फलां कंपनी है, बड़ी जबरदस्त पैनाडोल एक कंपनी है, वो पैरासिटामोल है इसमें, और वो आप जाओ जरा देखो, वो ऐसे नहीं होता, उनसे केस हो जाएगा। हो सकता है डॉक्टर साहब किसी ने केस किया हो, अब तक हमें इत्तला ना मिली हो, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं इस्तेमाल किसका करता हूं, मैं अंधी तकलीद नहीं, मैं खोपड़ी खोपड़ी इस्तेमाल, माइंड माइंड ऐसे एक्शन भी मार रहे उसके सामने, माइंड इस्तेमाल। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर कहेगा अच्छा फलां लैब में मैं तुम्हें वीडियो मंगवाता हूं, देखो ये पैनाडोल में ये वाला केमिकल डाला जा रहा है। डॉक्टर ने लैब का पूरा वीडियो बना के भिजवा दी, या आपको ले गए लैब का विजिट कराए, देखो ये केमिकल है ये इसमें डाला जा रहा है, ये पैनाडोल बन के आ रही है, डब्बों में पैक हो रही है, ये तेरे मुंह में जा रही है, ये देख। आपने कहा डॉक्टर साहब ये तो मैंने देख लिया, लेकिन इसकी क्या दलील है, ये वही केमिकल है, हो सकता है कोई सिरका डाल रहे हो, जो कीमियाई फॉर्मूला होता है ना केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जैसे पानी का है, NaCl गालिबन नमक का है, तो ये ऐसा ये है भी कि नहीं है। तो पता है क्या होगा, 4 पत्ते डॉक्टर को खाने पड़ेंगे पैनाडोल के। डॉक्टर कहेगा तू छोड़ पहले मैं खाऊं, मैं तो सेट हो जाऊं ना, उसके बाद मैं तुझे आगे का प्रोसेस बताऊंगा, क्या ख्याल है। डॉक्टर कहेगा पेनाडोल की तुझे नहीं, किसको जरूरत है मुझे, तुझे पेनाडोल की नहीं, तुझे अकल की जरूरत, तू किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा, साइकेट्रिस्ट के पास जा, तू गलत जगह आ गया है। क्योंकि तू अगर ठीक ना हुआ तो तेरी वजह से बहुत से लोग खराब हो जाएंगे, ठीक है ना, तेरी वजह से बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। डॉक्टर कहेगा भाई जब तुझे मान लिया, तूने मेरे पास आया मुझे डॉक्टर समझ के, तो अब मैं जो दवा लिख के दूंगा, अगर सारी दुनिया उसके खिलाफ है तो फिर ठीक है, तू इश्काल करके डॉक्टर साहब ये दवा तो कोई डॉक्टर नहीं देता, आप अकेले दुनिया में आए हैं। नॉर्मली अगर सारी दुनिया वो दे रही है तो तुझे क्या एतराज हो रहा है, तो ये क्यों नहीं मान लेता कि तेरी अकल हमारी अकल से कम है, यहां तुझे अकल इस्तेमाल नहीं करनी, अगर की है तो ये इफरात है, आप क्या कर रहे हो, अपनी हैसियत से आगे निकल रहे हो। तो खूब समझ लो, अल्लाह का वजूद साबित होता है अकल से, अकल इस्तेमाल करोगे तो साबित होगा कि अल्लाह है, यहां अकल इस्तेमाल करनी है। ये सिर्फ हम बाप दादा की वजह से अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए मानते हैं कि अकल कहती है कि खुदा है, फिर वो खुदा एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, यहां अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? फिर उस खुदा ने अपने बंदों को बना के छोड़ नहीं दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया और आपका दावा हम तक मुतवातिर सिलसिलों के साथ पहुंच रहा है कि पैगंबर आए, अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए किताबें नाजिल करता रहा, और आज दुनिया में नजर भी आ रहा है, दुनिया में सबसे बड़ी तादाद यहूदी ईसाई और मुसलमानों की है, पैगंबरों के असरात आज नजर भी आ रहे हैं, ये पैगंबर बरहक थे, इन्होंने तौहीद की दावत दी, इन सब चीजों के लिए क्या इस्तेमाल करना है, खोपड़ी। इसमें किसी की तकलीद नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये दो दो चार की तरह है, अल्लाह अपने बंदों को बना के कायनात इंसानों के लिए बनी है, तभी तो इंसान को दिमाग दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना कहां से साबित है, अकल से। आप गौर और फिक्र करोगे, आपकी अकल कहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे, उस पर दलाइल क्या हुआ, एक अलग टॉपिक है। अकल इस्तेमाल करोगे, आपकी अकल कहेगी भाई किसी झूठे नबी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, इतना प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता किसी झूठे नबी को, माज अल्लाह। कैसी खूबसूरत तालीमात जो 1400 साल के बाद भी चल रही है, और मैं कहता हूं एक ऐलान किया 1400 साल पहले नबी ने कि एक महीने के रोजे रखो, 1400 साल के बाद करोड़ों लोग रख रहे हैं, किसी के पास ऐसी पावरफुल मोटिवेशन है, कोई डॉक्टर एक दिन रोजा रखवा के दिखाए? तो निकाह तलाक के हकाम, विरासत के हकाम, इस्लामिक बैंकिंग, सूदी बैंकिंग के खिलाफ, ये सारी नबी की तालीमात की रोशनी में है। तो एक पैगंबर, उम्मी पैगंबर, और इतनी तालीमात दे के गए और पूरी दुनिया में उस पर हुकूमतें चली हैं, ये सब कहां से साबित होता है, अकल से। आगे अकल इस्तेमाल नहीं करनी, अल्लाह को अल्लाह मान लिया, अल्लाह के नबी को नबी मान लिया, अब जो ऑर्डर वो देंगे उसमें कहना मेरी समझ में नहीं आया, एक्चुअली ये पर्दे का हुक्म इस जमाने में समझ में नहीं आता, ये तीन तलाकें देके इतना पुराना रिश्ता एकदम से खत्म हो जाता है, बीवी हराम हो जाती है, बच्चे रुल जाते हैं, ये मेरी अकल में नहीं आ रहा, इस्लाम इतना जालिम मजहब कैसे हो गया, भाई इस्लाम तुमसे पूछ के बना नहीं है। एक साहब का मैं अक्सर वाक्य सुनाता हूँ ना, मुझसे विरासत का मसला पूछा कि बेटी का कितना हिस्सा, मैंने कहा आधा, बेटे का कितना, कह रहे दो, यानी इस्लाम ने औरत को इतना पीछे क्यों रखा हुआ है हर चीज में, मैंने कहा अल्लाह ने, हाँ मुसलमान से कह रहे हैं यार अल्लाह ने औरत को इतना पीछे क्यों रखा हुआ है, मैंने कहा अल्लाह से मुलाकात होगी तो मैं पूछ के आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, मैंने कहा क्योंकि अल्लाह अल्लाह है, तो मैं अल्लाह से मगर पूछूंगा कि क्यों, तो मुझ में और शैतान में कोई फर्क, शैतान ने अल्लाह के मुकाबले में अकल इस्तेमाल की ना, अल्लाह ने शैतान को कहा भाई सजदा कर, फरिश्तों को भी कहा सजदा करो, फरिश्तों की समझ में आया या नहीं आया, उन्होंने बोला भाई हमारी अकल अल्लाह से आगे, बोलो नहीं हो सकती, अल्लाह से आगे नहीं हो सकती, अल्लाह से आगे कौन जा सकता है भाई, सजदा कर लो, अल्लाह कह रहे इसी में खैर है, यही सही हुक्म है जो अल्लाह हमें दे रहा है। फिर अल्लाह ने उसकी लॉजिक भी बयान कर दी, फरिश्तों को सेटिस्फाई भी कर दिया बाद में, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म था, फरिश्तों के पास इल्म नहीं था, अल्लाह ने कहा देखो ये इल्म की वजह से फजीलत थी जिसकी मैंने तुम्हें सजदा कराया, हालांकि अल्लाह सेटिस्फाई नहीं भी करता तो अल्लाह के जिम्मे नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कहा इन्होंने मेरी इताअत की है तो इनको समझा भी दो कि मैंने बिला वजह हुक्म नहीं दिया, इसकी भी कोई रीजन थी, लेकिन शैतान को अल्लाह ने सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि उसने सजदा ही नहीं किया, अल्लाह ने कहा क्यों नहीं कर रहा भाई, उसने कहा मेरी अकल नहीं मानती, ये कैसे हो सकता है, मैं आग से बना और ये मिट्टी से बना, मैं आग होके मिट्टी को सजदा, लॉजिक इलॉजिकल काम तो मैं करता ही नहीं हूं, ठीक है ना, शैतान क्या कह रहा है, इलॉजिकल, ये मजहब की बातें इलॉजिकल होती है। आज भी ये थी मुल्हिद लिबरल लोग ना, लिबरल अंटियां, ये पर्दा वर्दा पता नहीं क्या है, नजर इंसान की नजर पाक होनी चाहिए, नजर पर्दा किसका होता है, दिल का, हालांकि होता दिल में भी नहीं है इन लोगों के, अपने शोहर के अलावा सारे मर्द इनको हैंडसम लग रहे होते हैं, और लिबर आदमी को अपनी बीवी के अलावा सारी अंटियां खूबसूरत लग रही होती हैं, फिर भी कहते हैं पर्दा किसका होता है, दिल का। तो लेकिन ये कि इलॉजिकल, इस्लाम के ऑर्डर्स क्या है, इलॉजिकल। वो टीवी पे एक टाकरा हो रहा था ना, आजकल तलाक का मसला बहुत ज्यादा उठा लिया गया है, इसलिए मैं इसको बार बार छेड़ता हूं। ये क्या है, इतना पुराना रिश्ता, कोई गवाह भी नहीं है। एक अभी नमूना आया है दोबारा मार्केट में, स्कॉलर आया है, वो उसके क्लिप बड़े चल रहे हैं, अपने आप को सुन्नी कहता है, शिया कहते हैं ना, ये बात तो हम कहते हैं भाई शियों का तो यही है कि गवाहों के बगैर तलाक नहीं होती, हालांकि दलील उनके पास कोई नहीं है इस पे। दलील क्या देते हैं, इतना जबरदस्त रिश्ता गवाहों के बगैर टूट जाए, इतना पुराना रिश्ता मर्द ने दे दी छूट गया, ये क्या इस्तेमाल हो रही है अकल। भाई अल्लाह ने कह दिया कि मुंह से दे दी तो खत्म। सुन्नी लोग क्या करते हैं, भाई अल्लाह के आगे जाने की जरूरत नहीं है, मजाक में दी, हकीकत में दी, गुस्से में दी, भाई अल्लाह से आगे मत निकलना। वो अभी नया नमूना आया है को मुफ्तियों में, वो कह रहे हैं कि गुस्से में तलाक नहीं होती, और दूसरी बात ये कि गवाहों के बगैर नहीं होती, इकट्ठी नहीं होती। मैंने कहा पहले ये निकाला इन्होंने कि इकट्ठी तीन दो तो एक होती है, अब नया नमूना निकाला कि गवाहों के बगैर नहीं होती, और तीसरा नमूना कि गुस्से के बगैर, गुस्से में नहीं होती। और दलील क्या दे रहे हैं, इतना जबरदस्त रिश्ता गुस्से में थोड़ी टूटता है, इसके लिए तो खानदान बैठे, ये बैठे। भाई वाकई गुस्से में नहीं तोड़ना चाहिए, शरीयत ने मना किया है, लेकिन टूटता है कि नहीं टूटता, ये कहां लिखा हुआ है शरीयत में। ये लोग एक दलील देते हैं कि हदीस में आता ला तलाका वला इताका फी इगलाक, इंसान पर जब राय और फिक्र के दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर तलाक नहीं होती। तो गुस्से में आदमी में सोचने समझने की सलाहियत बंद हो जाती है तो तलाक नहीं होती, ये कहां, ये क्या इस्तेमाल हो रहा है अकल। गुस्से में राय और फिक्र के दरवाजे बंद होते हैं तो फिर गुस्से में कत्ल कोई कर दे तो उसको कातिल को किसास भी ना लो, पागलों से किसास थोड़ी लिया जाता है। किसी आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा, बंदा मार दे तो शरीयत उससे किसास, पागल किसी को कत्ल कर दे ना, शरीयत उससे किसास बोलो नहीं लेती, नहीं लेती, वाकई नहीं लेती, बल्कि दियत लेती है, वो भी इसके कत्ल खता के जुमरे में आके कि उसकी तलाफी कर दे, किसास एहसास नहीं है उसमें। लेकिन गुस्से में आप बंदा मार दें, किसास लिया जाएगा आपसे। फिर जिस हदीस में आता है कि राय फिक्र के दरवाजे बंद हो जाएं उसमें तलाक नहीं होती, उसी हदीस में आता है कि इताक भी नहीं होता, गुलाम भी आजाद नहीं होता। किसी अहले हदीस का फतवा हमने नहीं देखा कि गुस्से में कह दो गुलाम आजाद तो गुलाम भी आजाद नहीं होगा। गुलाम को तो सब यही कहते हैं, भाई गुस्से में आजाद किया, खुशी से आजाद किया, आजाद। जैसे गुलाम आजाद हो जाता है गुस्से में, तो ऐसे ही मेरे भाई बीवी को तलाक भी हो जाती है गुस्से में। और ये तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, कोई प्यार से तो आज तक नहीं हमने किसी को देखा मोहब्बत से कोई तलाक दे रहा हो, ये कार्रवाइयां गुस्से में ही होती हैं। कत्ल भी, हर जुर्म किस में होता है, गुस्से में होता है। गुस्सा ना होता तो इंसान का बच्चा बन के बैठता, तभी तो कुरान ने मना किया है गुस्सा करने से भी और गुस्से में तलाकें देने से भी मना किया है, इसलिए किया है कि नहीं इसमें हो जाती हैं। खैर, इकट्ठी देने से मना किया है, इकट्ठी अक्सर गुस्से में ही दी जाती हैं। तो खैर, टॉपिक चेंज हो रहा है हमारा। तो अकल का इस्तेमाल अल्लाह के वजूद, अल्लाह के नबी की नबूवत के लिए तो होगा, उसके बाद जब अल्लाह को अल्लाह मान लिया, रसूल को रसूल मान लिया, अब जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे किया जाएगा। अब ये नहीं कि दाढ़ी इस्लाम ने रखने का हुक्म दे दिया, क्यों भाई क्यों, अब ये काम शैतान वाला कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, क्यों का क्यों, जो अल्लाह से किया था वो किसने किया था, शैतान। पांच नमाजें फर्ज हैं, टाइम हो या ना हो, क्यों का नहीं है। रमजान के रोजे रखने हैं, सिर्फ मुसाफिर और बीमार छोड़ सकता है, तीसरा कोई नहीं है जो नहीं। लोग, मैंने कहा ना, मजदूर पर भी रोजा रखना वाजिब है, चाहे वो कुदाल चलाता हो रमजान के रोजे में। लोगों ने इतनी गालियां दी हैं मुझे, अब तो मैंने गालियां देखना छोड़ दी हैं, सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी नहीं होता। तो हमने कहा यार हक बयान करते चले जाओ, लोगों को मत देखो, लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। आप फिलिस्तीन के जिहाद के फर्ज होने का फतवा दो तो भी खुश नहीं होंगे, और फर्ज ना होने का फतवा दो तो वैसे ही खुश नहीं होना चाहिए उनको। मुफ्ती तकी साहब ने भी फतवा दिया जिहाद फर्ज है तो भी खुश नहीं है, कह रहे जा क्यों नहीं रहे। अगर वो चले भी गए ना, यहां बैठ के फिर नेगेटिव कमेंट कर रहे बंदूक क्यों नहीं चला रहे, ठीक है। तो किसी हाल में खुश नहीं होते ये, कितनी बड़ी बहादुरी का काम किया उन्होंने, कितने बबांगे धोल ऐलान किया कि भाई फर्ज है। तो फर्ज किस पर होता है, ये जो फौजों पे फर्ज होता है ना, आवाम थोड़ी उठेगी कुछ भी कर लेके जाके। ऐसे तो क्या पता कि कौन जिहाद की नियत से असलहा लेके जा रहा है और कौन हमारे ऊपर ही बम फाड़ने के लिए असलहा लेके जा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई तंजीम होती है जिसको कोई कंट्रोल कर रहा होता है। तो खैर, आवाम कभी भी खुश नहीं होती भाई। तो मैंने वो बोल दिया कि मजदूर भी रमजान का रोजा मजदूर को भी रखना पड़ेगा। तो लोगों ने इतने नेगेटिव कमेंट्स दिए कि इनको मजदूरों पे तरस नहीं आता, ये मौलवी तो एयर कंडीशनों में रह के फतवे देते हैं। भाई एयर कंडीशन में रह के फतवा दें या गर्म धूप में बैठ के, फतवा वो देना है जो अल्लाह उसके रसूल की। अल्लाह रसूल ने मजदूर को रोजा छोड़ने की इजाजत बोलो नहीं दी। गर्मी की शिद्दत की वजह से रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है। अरब की गर्मी रेगिस्तानों की तो मशहूर, रमजान तो लाजिमी उन लोगों में हुआ है जो अरब की गर्मियों में तपती हुई धूपों में और जिसमें इतनी शदीद गर्मी जो खजूर के पकने के लिए जरूरी है, तो हम कहां से इजाजत दे दें। मैं एयर कंडीशन में बैठ के भी यही फतवा दूंगा कि मजदूर रोजा नहीं छोड़ सकता, और अगर मेरे हाथ में कुदाल हो तो भी मैं यही फतवा दूंगा कि मजदूर रोजा नहीं छोड़ सकता। हाँ वो रखे कैसे, वो तो प्यास से मर जाएगा, तो जब मरने लगे तो तोड़ दे, ये अल्लाह ने कहा, अल्लाह का फतवा है, जान बचाना फर्ज है, जब तक मरने नहीं लगेगा रखना पड़ेगा उसको। अब लोग कहते हैं ये तो फिर रोज उसकी हालत खराब होगी, रोज तोड़ेगा, रोज तोड़े। अब यहां आप अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्लाम ने कहा रमजान आएगा रोजा रखना पड़ेगा, हालत गैर हो गई मरने लगे बेहोश होने लगे तो तोड़ दो, तो रोज रखो रोज तोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शरी उसूल के तहत है। छोड़ना इसकी कोई लॉजिक नहीं है। मौलाना यूसुफ जहानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बचपन में हमने उनका फतवा पढ़ा, बड़े हैरान हुए, हजरत कैसा फतवा दे रहे हैं। जब हमने इफ्ता का इल्म हासिल किया इल्म, तो हमें भी पता चला यार वो बिल्कुल सही फतवा था। तभी इल्म साहिब इल्म ही के पास होता है। मैं जब 10 साल की उम्र का था तो मौलाना यूसुफ जहानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जंग अखबार में लोग मसाइल पूछते थे, उनसे किसी ने पूछा कि मजदूर हूं कोयले की कान में काम करता हूं, प्यास से हलक खुश्क हो जाता है मेरा, कोयले की कान में आप जाओ थोड़ी देर में हालत गैर, तो क्या मैं रमजान का रोजा छोड़ सकता हूं। और उसने कहा मैं मुसाफिर भी नहीं हूं, एक महीने के लिए आया हुआ हूं यहां। तो यूसुफ जहानवी शहीद रहमतुल्लाह ने लिखा, पहली बात तो यह कि भाई रात नाइट ड्यूटी करो, कोशिश करो नाइट ड्यूटी, दिन में ड्यूटी ना करो। तो ये भी मुमकिन, उसने ये भी लिखा कि नाइट ड्यूटी भी नहीं कर सकता, जॉब जाएगी, दूसरी जॉब कर लो, इन दिनों में छुट्टी ले लो, ये भी नहीं हो सकता, घर में गुजारा नहीं होगा। फिर उन्होंने फरमाया रोजा रखो, आप रोजा रखो, कान में काम करो, जब हालत गैर होने लगे, लगे कि भाई ये मसला खराब हो रहा है, तो फिर गैर का मतलब बीमारी का खतरा शुरू हो जाए, बीमारी का, शुगर लेवल डाउन हो गया, बीमारी, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही, ये उजर नहीं है, ये तो रोजे का हिस्सा है। किसी को बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, किसी को कम प्यास और कम भूख लगती है, ये उजर नहीं है, बीमारी, बॉडी को नुकसान होने का खतरा है, फिर तोड़ दो। तो उन्होंने लिखा रोज रखो रोज तोड़ो। मैं बड़ा हैरान हुआ उस दिन, मैंने कहा यार ये कैसा फतवा है, जब रोज तोड़ना ही है तो रखने की क्या फायदा। जब हमने खुद इल्म हासिल किया, फिर हमने यूसुफ जहानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के इल्म का इतराफ किया, वाकई मुफ्ती जो वाकई मुफ्ती हो वो अपनी तरफ से कोई बात बोलो नहीं करता। क्यों भाई, हम अल्लाह के कानून के पाबंद हैं। अल्लाह ने मुसाफिर को हुक्म दे दिया, बीमार को दे दिया, बीमार को छोड़ने का भी तोड़ने का भी। जब सुबह उठे थे सहरी का वक्त, आप सेहतमंद थे, मुसाफिर भी नहीं है सेहतमंद भी हैं। सिर्फ इस बेस पे नहीं छोड़ सकते कि मैं चूंकि मजदूर हूं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं भाई रोजा तो रखना पड़ेगा आपको, रखो आप, हालत गैर हो जाए तो वो, यहां भी हालत गैर हो जाए तो तोड़ दो, वहां भी गैर हो जाए तो क्या करो, तोड़ दो। तो जब हमने इल्म हासिल किया, हमें पता चला भाई इल्म वाकई किसके पास होता है, जो सही प्रॉपर वे में आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, उनके पास इल्म होता है। खैर हमारे हजरत के पास एक शख्स का फोन आया, बीमार था, हजरत ने उसको कहा कि तयम्मुम से नमाज पढ़ें, वो रोजाना तयम्मुम से नमाज पढ़ता, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता था। एक दिन हजरत के पास फोन आया कि हजरत मैं 3 दिनों से तयम्मुम से नमाज पढ़ रहा हूं, जब मैं सर्दी में गया मैंने नमाज ही तोड़ दी, तो नमाज में खुशू खुजू ही नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि वजू का अपना एक नूर होता है, गुसल का अपना एक नूर होता है, वो साफ सफाई मजा ही नहीं। हजरत ने फरमाया मुझे आपके ईमान पे खतरा है, क्या आपका ईमान भी बाकी है या नहीं है। इसलिए कि जब अल्लाह ने तयम्मुम को वजू का कायम मकाम बना दिया फला फला कंडीशन में, तो फिर अल्लाह की नजर में तयम्मुम और वुजू में कोई फर्क बोलो नहीं है। आपको मैं एक्चुअली मुझे वो लुत्फ नहीं आ रहा, तो लुत्फ का क्या करना है, तूने अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर भाई, तू इसको कहते हैं तकवे का हैजा, इसे क्या कहते हैं तकवे का हैजा, अल्लाह के हुक्म को फॉलो नहीं करना। एक और मैं मिसाल दे दूं आपको, ये सब वो है कि अल्लाह के मुकाबले में अकल इस्तेमाल। एक इमाम साहब ने मुझे कहा कि मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद मुझे याद आया मेरा वजू ही नहीं था। हो सकता है इंसान है यार, वो भी इमाम भी कह रहे मैंने, और उस वक्त नहीं याद आया, याद भी बाद में आया, ठीक है ना, अगले दिन आया या क्या था, कपड़े नापाक थे इत्तेफाक से क्या था, कह रहे मैंने ऐलान कर दिया भाई कल जोहर की नमाज सब लोग लौटा लें, इत्तेफाक से मेरा वजू नहीं था या कपड़े नापाक थे, बाद में देखा कहने तो लोगों ने लौटा ली नमाज। एक साहब बिगड़ गए, कह रहे मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई थी मस्जिद की इतने अरसे से, आपकी गफलत से मेरी नमाज कजा हो गई। अब तो जाहिर है कजा ही पड़ी जाएगी ना, आपकी गफलत से इमाम साहब मेरी पता नहीं 20 साल या 10 साल या 5 साल तकबीर उला फौत हो गई, 5 साल से मेरी नमाज कजा नहीं हुई और तकबीर उला मस्जिद की। ये इमाम साहब कहते हैं, मैंने कहा सॉरी भाई मैं जान के नहीं किया मैंने, नहीं मेरा तो मेरी तो कजा हो गई। बार बार उस इमाम को चलते फिरते टॉर्चर कि यार मेरा तो आपने ये नहीं, मेरा रिकॉर्ड जो बना रहा था मैं एक, एक तो मैंने कहा इसको तखवा नहीं है, इसको तखवे का हैजा है, इसको गेन्स बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवाना था सही है कि मैंने 5 साल तकबीर उला से नमाज पढ़ी है, फिर फख्र करना था बच्चों में, दुनिया को बताना था मैं इतना नेक हूं। अगर ये अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा होता, अल्लाह की रिजा के लिए, तो कहता कोई बात नहीं यार गलती हो गई, सवाब तो अल्लाह ने लिख दिया ना, सवाब तो तकबीर उला का लिख दिया, रिकॉर्ड थोड़ी बनाने हमने। ये वो लोग हैं जिन जो अकल इस्तेमाल कर रहे हैं शरीयत के खिलाफ। अब शरीयत कह रही है कोई नुकसान नहीं है आपका, हो गई नमाज, सवाब मिल गया आपका, अकल क्या कह रही है कैसे हो गई भाई, पढ़ी नहीं तो हो कहां से गई। तो ये अकल का इस्तेमाल शरीयत से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकल को शरीयत के आगे नहीं रखते। ऐसे भी एक वाकया सुनाता हूं आपको, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा मैं 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़ूंगा। वाकई नेक है वो, अभी भी है माशाल्लाह, हयात है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उन्होंने कहा भाई बहुत मसरूफियत में बाज दफा जाना भी होता है कहीं बाजार, तो मैं अब अजम करता हूं एक भी इमाम अल्लाह अकबर कहेगा और मैं भी कहूंगा, मेरी तकबीर उला फौत नहीं होगी। अब उन्होंने अजम किया और अपने सारे कामों को आगे पीछे कर दिया, बेगम को भी बता दिया, घर में बच्चों को भी, दोस्तों को भी, भाई मुझे ना बस तकबीर उला नहीं छोड़नी। अब मैंने 15-20 दिन चले, एक दिन कोई ऐसा कुछ आंख नहीं खुली उनकी या क्या हो गया, जैसे सोते हुए रह गए आंख नहीं खुली और फजर की जमात चली गई। बाद उन्होंने फिर 40 दिन उसको कंटिन्यू किया, मैंने पूछा हो गई 40 दिन, कह रहे नहीं हुई यार, 20 दिन के बाद एक नागा हो गया, आंख नहीं खुली। फिर खुशी खुशी कहने लगे, कह रहे अच्छा हो गया, खुशी खुशी कहने लगे, कह रहे अच्छा हो गया ताकि अल्लाह हमें पता चले हमारी औकात क्या है। मुझे इतना अच्छा लगा ना उनका ये अमल, कह रहे पढ़ लेता तो जहन में आता हम बड़े फंटर हैं, सही है ना, हम कर सकते हैं। कह रहे सवाब तो पूरा 40 दिन का मिल गया तकबीर उला का, क्योंकि वो मैंने जान के तो नहीं किया, लेकिन अच्छा हुआ नहीं हुआ ताकि एहसास हो गया भाई हम इतने फंटर हैं नहीं जितने हम अपने आप को समझते हैं। कह रहे सवाब पूरा मिल गया, रिकॉर्ड कायम भी हुआ। तो ये वो है जो अकल को शरीयत के नीचे रखते हैं। तो भाई अकल की एक लिमिट है, उसको क्रॉस करने की कोशिश मत करो। अल्लाह ने औरत को कह दिया पर्दा करे, करे। अल्लाह ने कह दिया मर्द को 4 की इजाजत है भाई, बस इसमें फायदा है, नहीं करो। आपको मैं थोड़ी करवा रहा हूं, क्यों एकदम टेंशन में भी बाज लोग चले जाते हैं, जो कर चुके हैं वो टेंशन में चले जाते हैं असल में। खैर, तो जब है तो भाई इसमें फायदा है, इसमें औरत का फायदा है। अल्लाह ने कह दिया नस्ल बढ़ाओ, तो ये नस्ल बढ़ाना औरत के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। अल्लाह से ज्यादा किसी का कोई खैर खो नहीं, औरत के फायदे की चीज है, मर्द के भी औरत के भी। इसलिए नबी ने फरमाया नस्ल कम नहीं करनी, नस्ल क्या करनी है बड़ा। अल्लाह को बड़ा खानदान पसंद है बनिस्बत छोटे खानदान के। अब इसमें आ रहे हैं गांधी साहब और लॉजिक वॉजिक पेश करके, एक्चुअली उस जमाने में एक्चुअली वर्चुअली करके घुमाते रहते हैं, हर चीज ही उठपटांग कर दी। अब वो मुझसे इरशाद भट्टी ने पॉडकास्ट में पूछा ना कि औरत अगर शोहर के साथ नहीं रहना चाहती और कोर्ट से खुला ले ले तो हो जाएगा खुला। मैंने कहा अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है, शोहर बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो नहीं होगा खुला। अब वो जवाब में क्या कहने लगा इरशाद भट्टी साहब, भाई जब वो नहीं रहना चाहती तो क्यों उसको आप मजबूर कर रहे हो। तो मैंने जवाब में क्या कहा, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, कौन मजबूर कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। तो ये अल्लाह से जाके पूछो, मैं आपको कुरान और सुन्नत के दलाइल दे सकता हूं कि अल्लाह कह रहा है कि नहीं कह रहा। भाई बीवी के पास आने का राइट है, जाने का राइट नहीं है। हाँ जुल्म कर रहा है एक अलग कहानी है, वो अलग बात है, वो जुल्म की नौयत क्या है वो एक अलग, वो केस को स्टडी किया जा सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि जी मैं नहीं रहना चाहती, मुझे पसंद ही नहीं आ रहे एक्चुअली। तो और इसमें जब डेप में जाओगे तो पता चलेगा औरत ही का फायदा है। खैर, तो भाई हमारे लिए तो अब अकल का दरवाजा ही बंद हो गया, जब हमें अल्लाह ने कह दिया औरत को नहीं है राइट, तो बस अब सोचने का दरवाजा क्या हो गया बंद। भाई अल्लाह से बेहतर कौन जानता है, खत्म। अब हम उसको समझाएं एक्चुअली यूं है, एक्चुअली यूं है। ये हम किसी मुल्हिद को, एथियस को या इस्लाम जो नहीं मानता उसको तो दिमाग खाली करेंगे, किसी मुसलमान पे ये चीजें जचती नहीं है। भाई नहीं है तो نہیں ہے. تو یہ ذہن اپنا بناؤ جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے. دیکھو ہمارے استاد ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے, کہتے تھے عقل کہتی ہے کہ سچ انسان کو پھنساتا ہے, جھوٹ انسان کو بچاتا ہے. عقل یہی کہتی ہے نا, سچ انسان کو پھنساتا ہے, جھوٹ انسان کو بچاتا ہے. حدیث کیا کہتی ہے, الصدق ینجی والکذب یہلک. سچ انسان کو بچاتا ہے, جھوٹ انسان کو پھنساتا ہے. اب ہر ایک کی مینٹیلٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو گھنٹوں بٹھا کے سمجھایا جائے کہ سچ کیسے بچاتا ہے اور جھوٹ کیسے پھنساتا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ سچے لوگ نکل جاتے ہیں, جھوٹے پھنستے ہیں. کیسے؟ دیکھو کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, منافقین آ کے جھوٹ بولتے گئے کہ ایکچولی یہ عذر تھا, حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا. وہ نکل گئے, منافقین سارے نکل گئے, انہیں کوئی سزا نہیں ملی. حضرت کعب ابن مالک سچ بول دیا, انہوں نے کہ کوئی عذر نہیں تھا, میری غلطی ہے, پھنس گئے. 40 دن بائیکاٹ, کوئی بات چیت نہیں کرے گا. تو اگر ان کو اللہ پہ ایمان نہ ہوتا, عقل استعمال کرتے, تو وہ کیا سوچتے کہ یار سچ نے پھنسا دیا اور جھوٹوں کو جھوٹوں نے بچا لیا, میں تو پھنس گیا. 40 دن 50 دن ہو گئے کوئی بات نہیں کر رہا. نبی نے حکم دیا بیوی کے بھی قریب مت جاؤ, نبی سلام نہیں کر رہے. لیکن انجام کس کا ہوا؟ منافقین کے لیے آیتیں نازل ہوئیں کہ بچ گئے ہیں, آگے نہیں بچیں گے. یہ کوئی پروٹوکول نہیں ملا منافقین کو, کوئی عہدہ نہیں ملا, کوئی حدیث کسی منافق سے نہیں لی گئی. اللہ نے ایسا ذلیل کیا ان کو, ایسا ذلیل کیا اللہ نے ان کو. اور جب کعب ابن مالک کے لیے آیتیں نازل ہوئیں, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدت کا امک, حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میری توبہ قبول ہوئی نا, تو نبی کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا, استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے, ایسے خوش. اور فرمایا اے کعب اللہ نے تیری خوشخبری, تیری توبہ قبول کر لی ہے, آج میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں اس دن کی جو تیری زندگی میں کبھی ایسا خوشی کا دن نہیں آیا. تو حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں امین عندک ام من عند اللہ, یا رسول اللہ یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا من عند اللہ, یہ پائیدار خوشخبری ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. اس کے بعد کعب ابن مالک کتنے بڑے صحابی, کتنا خوبصورت واقعہ, اور پھر قرآن میں توبہ نازل ہوئی ان کی. ہم تلاوت کرتے ہیں جب بھی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اللہ کہتے ہیں ان تین کی بھی میں نے توبہ قبول کر لی. ایک مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ اور کعب ابن مالک, یہ تینوں نے کیا کہا تھا؟ سچ. تو حدیث کہتی ہے سچ بچاتا ہے, جھوٹ مروا دیتا ہے. لیکن ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ جھوٹ بچاتا ہے, وقتی طور پہ بچاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور پھر نبی نے فرمایا انسان جھوٹ بولتا ہے, پھر ایک جھوٹ, پھر دوسرا جھوٹ, پھر دوسرا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے نہیں ہوتے, جو تھوڑا کرتا ہے وہ بہت نہیں. جیسے ایک جو چپل چوری کرتا ہے نا, اس کو موقع ملے تو بینک سے 1 کروڑ روپے بھی چوری کرے گا. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اصل میں چپل چوری کرنا چونکہ چھوٹا گناہ ہے تو اس لیے چپل چوری کرتا ہوں, 1 کروڑ کی گڈی چونکہ بڑا گناہ ہے یہ رہنے دو, ایسا بولو نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. وہ تو اس کو چونکہ موقع نہیں مل رہا اس لیے وہ چپل چوری کر رہا ہے بےچارا. تو ایسے ہی جھوٹ ایک ایسی چیز ہے, جو تھوڑا جھوٹ بولتا ہے وہی بڑے جھوٹ بھی بولتا ہے, جو نہیں بولتا وہ چھوٹا جھوٹ بھی نہیں بولتا. الا یہ کہ جہاں شریعت نے وقتی طور پہ جان بچانے کے لیے, وہ تو کل میں کفر کہنے کی بھی اجازت ہے نا, کوئی قتلی گردن ہی اڑا رہا ہے آپ کی. نارملی جو چھوٹا جھوٹا ہے وہی بڑا جھوٹا بھی ہے, جو نہیں بولتے وہ بڑا جھوٹ بھی نہیں. میری اپنی عادت بچوں کے ساتھ پتہ ہے کیا رہی ہے, ہمیشہ میں نے کبھی بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا. مجھے نہیں یاد پڑتا, بچوں کو چپ کرانے کے لیے نا, بچوں کو چپ کرانے کے لیے ماں باپ جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں عید کے بعد وہاں لے کے جائیں گے, ابھی چپ کر جاؤ. اچھا ایسا ہے کہ میں تمہیں یہ چیز دلاؤں گا, ابھی چپ کر جاؤ. میں دل میں نیت کرتا ہوں بیٹا تو دلائے گا تو بول, ورنہ مت بول. وجہ اس کی ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا, ٹوپی کرا دی بچے کو چپ کرانے کے لیے, بعد میں پھر ٹوپی. بچہ پھر چھوٹا جھوٹا نہیں بنتا, وہ بڑا جھوٹا بنتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ وہ پھر جھوٹ کا پلندہ بن جاتا ہے, وہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے ہر وقت بیٹھ کے. تو مائیں بعض دفعہ بچوں کو جھوٹ بلوا رہی ہوتی ہیں, بچوں ماں اپنے شوہر کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوتی ہے بچوں کے سامنے, بچوں کی موجودگی میں. بیٹی دیکھتی ہے کہ میری اما نے میرے ابا کو ٹوپی کرا دی ہے, میری اما نے میری ابا کو یہ چیز آئی تھی 1000 روپے کی, اما نے بل بنایا 1200 रुपए का, बच्ची देख रही होती है तो बच्ची झूठ बोलना सीखती है। एक खातून ने बताया था ना रमजान में कि मैं शौहर की पतलून से पैसे निकालती थी, इतने अरसे से निकाल रही हूं तो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पर ज़कात है या नहीं है। तकवा देखो यार, एक तरफ तकवा देखो। तो आप पतलून से पैसे निकाल रही हैं या आपका और आपके मियां, पतलून भी आपकी, मेरी पतलून नहीं है, आपके मियां की पतलून है, मैं तो पतलूने पहनता भी नहीं हूं, तो आपके मियां की पतलून आप जाने, लेकिन अल्लाह का वास्ता अगर ये काम करना है तो गलत काम है, लेकिन करना ही है तो कम से कम बच्चों के सामने मत करो, टोपियां मत कराओ बच्चों के सामने, झूठ मत बोलो, शौहर को भी चाहिए मत बोले, वो भी झूठ बोल रहा होता है बीवी के सामने और बच्चों को पता होता है अब्बा टोपी करा रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ना अकल का इस्तेमाल किया है, अस्सिदुकु युंजी वल कदीबु युहलिक, सच बचाता है झूठ फंसाता है। तो हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे अकल कहती है कि झूठ बचाता है सच फंसा देता है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि देखो नबी की बात पर अमल करना, सच बोलना। तभी मैंने जब भी शादी की है ना पुरानी शादी छुपाई नहीं है, कितने रिश्ते मेरे रिजेक्ट हुए हैं कि इतने बच्चे तुम्हारे और पौने पौने का हिसाब रखा हुआ है, पौने वाला भी बता रहा होता हूं जो भी मार्केट में आया नहीं है। कितनी दफा ऐसा हुआ रिश्ता भेजा, लोगों ने कहा दो है ना तो एक बताओ दो नहीं बताओ, उस वक्त मैं ज्यादा फेमस, मैंने कहा जितनी है उतना बताऊं, उतनी बताऊंगा, देनी है दो नहीं देनी है मत दो, जितनी आमदनी है उतनी बताऊंगा भाई। उससे क्या होता, अगर मैं झूठ बोल के कर लेता, झूठ पकड़ा जाता है तो घर वालों की नजर में 2% की इज्जत नहीं रहती। उन्होंने कहा वो कहते हैं इन्होंने हमें टोपी कराई, हम भी टोपियां कराते रहे, तो मियां बीवी के शुरू से ही टोपियां शुरू होती है एक दूसरे को, झूठ ही बोल रहे हो भाई, क्लियर रहो, उससे काम देर से होता है, फायदार काम होता है। झूठ मत बोलो किसी से कि आमदन है नहीं, आप बता रहे हो इतनी, तो ये सब बातें। तो खैर खुलासा बयान का ये निकला कि पहली कुव्वत जो मैंने बताई ना अकुव्वत अकलिया, उसमें बैलेंस क्या है, यही टॉपिक मैं अगले हफ्ते भी लेके चलूंगा, फिर ये इल्लल मुसल्लीन से इसको अटैच करूंगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पूछा है जी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है जब फरिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया तो इबलीस यानी शैतान भी वहां मौजूद था और इसने सजदे से इनकार कर दिया। इबलीस जो कि एक जिन था, क्या इसका मकाम फरिश्तों के बराबर था और क्या वो फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में मौजूद होता था? कुरान इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन क्या कोई मुस्तकिल अहादीस हैं जो इस पसे मंजर को डिटेल में बताती हों? कुरान में जब अल्लाह ने ये बता दिया कि तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय शैतान के, कानम इलल जिन, और वो जिन्नात में से था, तो दलालतुन्नस से पता चलता है कि फरिश्तों के साथ जिन्नात को भी हुक्म था। दलालतुन्नस किसे कहते हैं? जिसका वाज़े जिक्र ना हो लेकिन उस कलाम को दुरुस्त करने के लिए, यानी उस कलाम से सरसरी गौर से पता चल रहा हो कि ये भी हुक्म था, बल्कि इसको कहते हैं इख्तिज़ाउन्नस। क्या मतलब? जैसे कुरान में आता है कि अगर कोई शख्स किसी की वफात हो जाए, वारिसहु अबावाहु, और उसके वारिसीन में सिर्फ उसके वालदैन है अब्बा और अम्मा और कोई भी वारिस नहीं है जिंदा, फली उम्मी ही सुलुस, तो अम्मा को 1/3 हिस्सा मिलेगा, अब्बा का नहीं बताया कि कितना मिलेगा। अब कोई कहे जिस मुफ्ती से भी पूछो कि अगर कोई शख्स की वफात हो गई, उसके वारिसों में ना बीवी है ना बच्चे हैं, सिर्फ एक अब्बा और एक अम्मा है, तो सारे मुफ्ती कहते हैं कि 1/3 अम्मा का और 2/3 अब्बा का, 33% अम्मा का, 66% अब्बा का, हालांकि अब्बा का तो कुरान में 66% कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि कुरान कह रहे हैं सिर्फ अब्बा और अम्मा है, वारिस हैं, तो वारिस को मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। इससे पता चल गया अब्बा को मिलेगा लाजमी, अब्बा को कुरान वारिस कह रहा है, और ये भी कह रहे हैं सिर्फ ये दोनों ही वारिस हैं अम्मा और अब्बा, इससे ये भी पता चल गया कि कोई तीसरे को नहीं मिलेगा। फिर कुरान ने कह दिया अम्मा को 1/3 मिलेगा, तो जब 1/3 अम्मा को मिलेगा तो जो बाकी बचेगा वो अब्बा के अलावा किसी को इसलिए नहीं मिलेगा कि कुरान उनको वारिस ही नहीं मान रहा, और सारा अब्बा ही को अकेले को इसलिए मिलेगा कि दूसरा वारिस सिर्फ अब्बा ही है, तो वो सारा कितना रहता है? 66%। तो इसको कहते हैं इख्तिज़ाउन्नस, यानी कलाम को दुरुस्त मानने के लिए हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम ये फर्ज करें कि अब्बा का 2/3 है, वरना कुरान का कलाम ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कुरान कहता है अगर कोई शख्स मर जाए अम्मा को 1/3 मिलेगा, और वारिस सिर्फ अब्बा और अम्मा है, कोई और वारिस भी नहीं है। हम अगर अब्बा को 1/3 दें, 1/3 से ज्यादा ना दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर बाकी आप किसी और को देंगे, तो ये ववारिसहु अबावाहु का लफ्ज ही गलत हो जाएगा। कुरान कह रहे वारिस ये दोनों, आप किसी और को वारिस क्यों बना रहे हो। अब्बा को अगर हम 2/3 से ज्यादा दें तो कुरान की ये बात गलत हो जाएगी कि अम्मा का 1/3, क्योंकि अब्बा को 2/3 से ज्यादा देंगे तो अम्मा का 1/3 से कम करना पड़ेगा। तो ये सब कुरान की आयत को यानी ठीक करार देने के लिए हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि अब्बा को 2/3 देना पड़ेगा। और इसी वजह से कुरान ने अलग से अब्बा का तस्करा ही नहीं किया कि कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लो तुम लोग, ठीक है ना। कुरान जब फिकही मसाइल बयान करता है तो बहुत शॉर्ट में बयान करता है, जब नसीहत की बातें करता है तो बहुत लंबी बात होती है, क्योंकि नसीहत में डिटेल होती है, नसीहत में शॉर्ट कलाम नहीं चलता। देखो जब आप अपने बेटे को नसीहत करते हो तो इंतहाई मुख्तसर नहीं होती वो, बेटा सही बन के जिंदगी गुजारना, ठीक है चलो जाओ शाबाश, ऐसे नहीं होती नसीहत। नसीहत ये होती है बेटा देखो फलां का बच्चा चर्स की तवा पकड़ा गया था, जिंदगी बर्बाद हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया, फिर सिर्फ एक चर्स छुड़वाने के लिए ही ना 2 घंटे की बात करोगे आप, एक ही चीज को बार बार रिपीट करोगे, रिपीट करते रहोगे। तो कुरान ने बहुत ज्यादा रिपीट किया है वाज़ो नसीहत की बातों को, जहां मसाइल सेशन कुरान में शुरू होता है टू द पॉइंट, ठीक है ना, इतनी शॉर्ट बात होती है कि उसके लिए खोपड़ी इस्तेमाल किए बगैर वो समझ में आती नहीं है। तो और अजीब इस विरासत के अहकाम तो बहुत ही शॉर्ट बयान किए कुरान ने। अब आप ये देखो कुरान कहता है कि अगर किसी शख्स के 1 बेटी हो और कोई वारिस ना हो, यानी भाई बेटा ना हो, फलहन निस्फ, तो बेटी को कितना मिलेगा, आधा। और कुरान कह रहा है अगर किसी शख्स के 2 से ज्यादा बेटियां हों, व इन कुन्ना निसाअन फौकस नतैनी, 2 से ज्यादा बेटियां हों तो फलहुन्ना सुलुसा मातरक, तो 2/3 मिलेगा बेटियों को, 2 का तस्करा ही नहीं है, ठीक है ना, कि 2 हो तो कितना मिलेगा, आप लोग की समझ में, रहने दो। कुरान कह रहा है बेटा अगर नहीं है ना किसी का, सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, तो अगर 1 बेटी है तो आधी विरासत, 2 से ज्यादा है तो 2/3, 2 हैं कितनी है, यही कुरान बयान कर रहा ताकि लोग फुकहा से मसले पूछें, ताकि पता चले कि ये कुरान की डेप में कुछ लोग जाएंगे जो मसाइल निकालेंगे। और कुरान ने ये बात कहां कही है, वअनزلना इलैका ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون, हमने इस कुरान को नाजिल किया ताकि आप एक्सप्लेन करें और उसके बाद ये गौर व फिक्र करें उसमें। तो इसलिए फुकहा डेप में जाके गौर करते हैं, उनसे मसाइल का इल्म लिया जाता है, वो कुरान और हदीस को ज्यादा समझते हैं। तो 2 से ज्यादा का तस्करा अल्लाह ने इसलिए नहीं किया कि 2 का तस्करा इसी से खुद ही समझ में आ जाता है, क्योंकि बेटी अगर 1 हो तो आधा आधा लेती है, उस बेटी के साथ अगर 1 अदद बेटा भी हो तो बेटी का हिस्सा 1/3 हो जाता है और बेटे को दुगना मिलता है। समझ में आ रही है बात, बेटे को कितना मिलता है, दुगना। तो अगर बेटी के साथ 1 अदद बेटी ही हो तो बेटा अपनी बहन का हिस्सा 1/3 से कम नहीं कर सकता, तो बहन अपनी बहन का हिस्सा 1/3 से कम कैसे कर सकती है, हालांकि बेटे को ज्यादा मिलता है ना, बेटे में इतनी पावर नहीं है कि इकलौती बहन को 1/3 से नीचे ले आए वो। तो इसके साथ अगर एक और बहन होती, 2 बहनें होती, तो उनको हम 1/3 कैसे देते, 1/3 उनमें डिवाइड करते तो 1/3 दोनों में बराबर हो जाता, तो 1 बेटी का हिस्सा 1/3 से कम हो जाता। तो बेटा बेटी का हिस्सा 1/3 से कम नहीं कर सकता, तो बेटी बेटी का हिस्सा 1/3 से कम कैसे कर सकती है, तो इसे बता दे 1/3 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 बेटियों को जब 1/3 देंगे तो कितना बन जाएगा, 2/3। इसलिए कुरान ने कहा कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, तो फुकहा ने इस्तेमाल की, उन्होंने कहा बेटी अगर 1 हो तो 1/3, 2 हो तो 2/3, 2 से ज्यादा हो तो कुरान ने वैसे ही बयान कर दिया। आप कह सकते हो फिर कुरान 2 से ज्यादा को भी बयान ना करता, 2 से ज्यादा को बयान इसलिए कुरान ने कर दिया, उसमें इश्तिहाद चल नहीं सकता था, उसमें कोई ये कह सकता था कुरान कह रहा है 2 बेटियों का 2/3 तो 2 से ज्यादा का पता नहीं कितना होगा, हो सकता है वो उसमें कोई कमी बेशी हो। तो कुरान ने कह दिया 2 से ज्यादा हो तो दो तिहाई, एक हो तो आधा, दो हो तो खुद समझ जाओ बाकी आयतों में गौर करके, ठीक है ना। तो बाकी आयतों में गौर किया, वहां ने सबने फतवा दिया, दो बेटियां हो या दो से ज्यादा, उनको दो तिहाई ही मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया थोड़ा बादाम के तेल की मालिश करें। मुफ्ती साहब अल्लाह ताला ने, हाँ तो यहां भी शैतान का मसला तो हम हल करें। तो अल्लाह ने जब कह दिया कि मैंने हुक्म दिया सजदा करने का, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय शैतान के, और वो जिन में से था। तो दलाल तो नस्से या इख्तिजा नस्से से पता चलता है कि फरिश्त जिन्नात को भी सजदा करने का हुक्म हुआ था। ये कॉमन यानी खुद बहुत ही पता चल गया। अब कैसे हुआ था, या तो वाज़े तौर पे हुक्म हुआ था अल्लाह ने फरिश्तों के साथ जिन्नात को भी, या ये दलालतन हुक्म हुआ था कि जब फरिश्ते जो जिन्नात से अफजल है उनको हो रहा है, तो तुम तो किस खेत की मूली हो भाई, तुम तो खुद बहुत उसमें दाखिल हो। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई ऑफिसर आया तो आपने बोला कि एहतराम में खड़े हो जाओ, अफसर आ रहा है, सब खड़े हो गए, चपड़ासी खड़ा नहीं हो रहा, सब खड़े हो गए, वो जो चपड़ासी है ना वो नहीं खड़ा हो रहा। तो उसको बोले तू एहतराम में क्यों नहीं खड़ा हुआ, कह रहे हैं आपने मुझे तो कहा ही नहीं। हम कहेंगे भाई जब इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स को हुक्म दिया जा रहा है वो बॉस के एहतराम में खड़े हो जाए, तू तो बेचारा वैसे ही पोछा लगाता है, तू बैठा हुआ है टांगे फैला के यूं करके मेरी, तो ये कॉमन सेंस है। समझते हैं कि नहीं समझते? फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर शैतान से जब मुलाकात हो तो पूछ लेना भाई तूने सजदा क्यों नहीं किया। अगर वो कहता है कि मुझे ऑर्डर ही नहीं हुआ था तो फिर क्या, फिर अल्लाह ने तुझे सजा क्यों दी? तो कहेगा फिर ये तो अल्लाह का माज अल्लाह कसूर है, शैतान तो कुछ भी कह सकता है। तो फिर आपने उससे कहना है कि फिर तूने अल्लाह को ये क्यों कहा कि मैं आग से बना हुआ हूं और ये मिट्टी से, तू ये कहता कि तूने मुझे ऑर्डर दिया ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। शैतान ने ये थोड़ी कहा था तूने मुझे ऑर्डर नहीं दिया, शैतान ने ये रिपोर्ट पेश की थी कि मैं आग से बना हुआ हूं ये मिट्टी से। इसका मतलब शैतान भी ये बात मानता था कि सरदे का ऑर्डर तो हुआ है, लेकिन शैतान की राय ये थी कि ये ऑर्डर सही नहीं है, ये माज अल्लाह गलत बात हुई है। शैतान के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं? जी जी, ये कह रहे हैं दुनिया में तो शैतान से मुलाकात होती नहीं, अगर कोई डायरेक्ट जन्नत में चला जाए तो शैतान से मुलाकात कैसे होगी? फिर क्या करना है शैतान से मुलाकात करके? अच्छा जी, मुफ्ती साहब अल्लाह ताला ने असबाब के साथ दुनिया के मुआमलात रखे हैं, तो फिर जब एक शख्स गरीब है तो फिर वो जल्दी शादी क्यों करे और गुसल और नस्ल क्यों बढ़ाए, वो तो लोगों पर बोझ बनेगा और खुदकुशी की तरफ जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात की, फी नफसी ही दुरुस्त बात की है कि जब अल्लाह ने असबाब का हुक्म दिया है तो जब गरीब आदमी शादी करेगा या बच्चे पैदा करेगा तो असबाब ये कहते हैं कि खर्चा दुगना हो जाएगा, फिर बच्चे आते चले जाएंगे उनका भी खर्चा, तो पैसे हैं नहीं, तो असबाब की दुनिया में मसला होगा। उसका जवाब आज का पूरा बयान है कि अकल इस्तेमाल की जाएगी वहां जहां शरीयत ने इजाजत दी है। जहां शरीयत ने कहीं ऑर्डर आ जाए तो फिर उससे आगे अकल का इस्तेमाल करना ये अकल का गैर जरूरी इस्तेमाल है। ये तो इसका जवाब हो गया शरीयत की रोशनी में। दूसरा जवाब हो गया अकल ही की रोशनी में हम इससे ये जवाब लेते हैं। देखो यहां अगर आप अकल इस्तेमाल करते भी हो तो अकल के दो तरीके होते हैं इस्तेमाल करने के, एक है सही तरीका एक है गलत तरीका। सही तरीका वो है जो वही की रोशनी में हो जिससे इंसान की अकल सीधी राह दिखाती है। गलत तरीका वो है कि ख्वाहिशात को सामने रख के आप अकल इस्तेमाल करो। एक चरसी जब चर्स पीता है वो भी अकल इस्तेमाल करता है ख्वाहिशात को सामने रख के, यार पीने दो मजा आएगा देखेंगे बाद में तौबा कर लेंगे या इलाज कर लेंगे। ये अकल का सही इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये वो अकल है जो ख्वाहिशात से मगलूब है। जो अकल ख्वाहिश से मगलूब नहीं होती वो कहेगा भाई ये चर्स बुरी चीज है, मजा है दो मिनट का और ये इसका चस्का लगेगा, बाद में छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मुल्हिद एथियस लोग हैं वो यहां भी अकल का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो अभी पैसे तो है नहीं, फिर बच्चा हो जाएगा तो पैसे तो है नहीं। बात यह है कि पैसा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में यकीनी तौर पर बताना कि कब कौन से असबाब पैसे के आप में पैदा होंगे कब नहीं होंगे ये अकली तौर पर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि रोज रोज नए नए असबाब पैदा होते हैं और नए नए असबाब और पुराने असबाब फना होते हैं। वसाइल जो है ना वसाइल, इसकी कोई स्पेसिफिक कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती किसी भी दौर में। दुनिया में कितने वसाइल हैं हमारे पास, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है? और अगर कैलकुलेट कर लिए तो मौजूदा है ना, हो सकता है कल कोई नए मसाइल दरियाफ्त हो जाए। तो ये एक ऐसी चीज है, तभी उलमा कहते हैं जिसके हाथों में कमाने की ताकत और पांव में चलने की ताकत हो वो मालदार है, क्योंकि पैसे नहीं है लेकिन कमा सकता है वो। कल दिहाड़ी लग जाए उसकी, कल कोई जॉब लग जाए, कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब पे खाने पकाने की तरकीबें बना के डालना, कुछ भी नहीं आता, यूट्यूब पे गालियां देना शुरू कर दें, चैनल बूस्ट कर जाएगा उसका। आप ये ब्लॉगर को देखो ना, मैं आ गया हूं, फिश फिश करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और मिलियंस में चैनल उनके, मैं लैट्रिन में बैठा हुआ हूं, वॉशरूम में बैठा हुआ हूं, कब्ज हो गया मुझे, लोटा लेकर आओ, ऐसा चलेगा आप भूल जाओगे। 10 साल पहले कोई बता सकता था कि ये भी कोई पैसा कमाने का तरीका होगा, मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूं, कोई बता सकता था? इतने नित नए तरीके, अकल खुद कह रही है कि इसके बारे में किसी के बारे में ये राय कायम करना कि ये गरीब है तो गरीब ही रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये अमीर है तो कल भी अमीर ही रहेगा। अगर ये फलसफा हो तो अमीर को भी शादी नहीं करनी चाहिए। वजह उसकी है कि आज आपकी फैक्ट्री है, हो सकता है फैक्ट्री को आग लग जाए, हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो बिजनेसमैन बैठा करते थे ना, जरदारी कुछ भी नहीं था उनके मुकाबले में, वो सब 4 शादियां करने का प्रोग्राम था उनका, कि हमारा तो खरबों का बिजनेस है, जहाज आया पूरे बिजनेस की बाट लगा दी, रोडों पे आ गए, खुदकुशियां की हैं बहुत, जो बच भी गए ना उन्होंने भी खुदकुशियां कर ली। तो अलमाल गादिन वरा, पैसा ऐसी चीज है आज आया कल गया। तो इसलिए शरीयत ने इसमें मदार इस पर रखा है कि बिलकुआ, बिलकुआ का मतलब हाथ पांव सलामत है या नहीं है, बस काफी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? और दूसरी बात, अकल क्या कहती है? आप गरीब हैं तो क्या दुनिया के सबसे गरीब आप ही हैं? ये तो अकल कहती है कि आप गरीब हैं तो डिफेंस की लड़की से शादी ना करें, लेकिन ये नहीं कहती कि आप गरीब हैं तो अपने से भी ज्यादा गरीब से शादी ना करें। क्योंकि अगर आपकी आमदन फॉर एग्जांपल 10,000 है, बहुत ही गरीब की होगी ना, तो ऐसे लोग भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिनके बाप, जिनकी आमदन 5,000 है और उसमें 6 बेटियां पाल रहे हैं वो, तो उसके हिसाब से 10 वाला क्या है, गरीब है मालदार है? मालदार है, क्योंकि अमीर और गरीब की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ये उमूर इजाफिया होते हैं। उमूर इजाफिया का मतलब ये होता है कि हम इसमें एक दूसरे से कंपेयर करके कहते हैं कि ये अमीर है और ये क्या है, गरीब है। मिसाल के तौर पर देखो, एक आदमी को किसी गांव से आया और कराची में चौकीदारी की नौकरी मिल गई उसको, किसी गली में चौकीदार लग गया, वो गांव फोन कर करके खुशी से बताता है मैं बारोजगार हो गया हूं, मेरा रोजगार लग गया है कराची में, मुझे एक गली में चौकीदार की नौकरी मिल गई है, मेरी शादी कराओ। गांव वाले ढोल बजाते हुए आते हैं और सब लोग अपनी बेटियां पेश कर रहे होते हैं, यार ये लड़का मुंडा कराची में इसकी जॉब लग गई, हमारी बेटी लो, वो कह रहे हमारी बेटी लो। क्या मतलब? उनके लिहाज से वो मालदार है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो आपको गरीब लग रहा है, अगर वो गरीब होता तो गुरबत पे मिठाइयां थोड़ी बांट रहा होता और उसके रिश्ते थोड़ी आ रहे होते। लैंड लगती होता है कराची से, जब ये कराची से जो मजदूर पेशा लोग गांव देहातों में जाते हैं ना, ये बूट पॉलिश करते हैं, कपड़ों को इस्त्री करते हैं, आंखों में सुरमा लगाते हैं और बसों से ऐसे तैयार होके नहा धो के गांव में ऐसे जा रहे होते हैं जैसे $6 million मैन। इंग्लिश फिल्म आया करती थी बचपन में, $6 million मैन, उसके करोड़पति आदमी था वो। तो ऐसे लगता है कि अगले इलेक्शन में अब गांव में यही जीत जाए, ऐसे आते हैं और घर में जाके 50 का नोट निकालते हैं। हकीकत है उनके लिहाज से ये क्या है, बहुत अमीर है। तो वो ऐसे, हमारे लिहाज से वो गरीब है, तो वो अपने जैसे गरीबों में शादी करे, वो उनको अमीर ही समझेगी, उनकी बीवी उनको। क्योंकि शादी जहां खानदान इंसानों में ही होती है ना, तो इंसानों में आप जैसे और भी बहुत सारे इंसान है। आप अगर टमाटर बेचते हो तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको टमाटर बेचने की ताकत भी नहीं है, ऐसी लड़कियां भी मिल जाएंगी आपको। और डिफेंस वाले की नजर में ये क्या है, गरीब तरीन इंसान है। क्या ये तो बेचारा गली में चौकीदारी कर रहा है, ये तो टमाटर बेच रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? एक बात आगे, दूसरी बात रही बच्चों की। तो अकल ये कहती है कि अभी जेब में पैसे नहीं है, बच्चा जब पैदा होगा तो कहां से खिलाएंगे। ये वो अकल है जो शहवत से मुतासिर है, जो खुदा के मुकाबले में, जब वही के नूर से अकल आरास्ता होती है तो फिर अकल सही इस्तेमाल होती है। अकल कहती है बच्चा पैदा हुआ, मां की छातियों में दूध आया, इसका मतलब पैदा करने वाला इससे गाफिल बोलो नहीं, इसका रिस्क का इंतजाम किसने किया हुआ है, अल्लाह ने। अब फिर वही शहवत परस्तों की अकल, वो कहेंगे यार बच्चे के लिए सिर्फ दूध ही तो नहीं चाहिए ना, बच्चे को सिर्फ दूध थोड़ी चाहिए, बच्चे को तो स्कूल का फीसें और आगे इलाज और फलाना और डिमकाना, ये वो अकल है जो शहवत परस्ती से और कंजूसी से मغلوب है। असल में पैसा बचाना मकसद है कि मैं ही खा जाऊं सारा। लेकिन यहां भी जिसकी अकल सही इस्तेमाल होगी वो कहेगी भाई, वो अकल कहेगी एक साइन है, अलामत है, पैदा करने वाला कह रहा है अभी इसके लिए जरूरत दूध की है तो मैंने अपनी ताकत से दूध पैदा कर दिया, जो सबसे मुश्किल काम था वो मैंने कर दिया, तो जो आसान है वो नहीं कर सकता मैं। सबसे मुश्किल काम जो किसी का बाप नहीं कर सकता वो दूध पैदा करना है। बच्चों की स्कूल की फीसों का ज़कातों से भी इंतजाम हो सकता है, फ्री फोकट के स्कूल भी खुल जाते हैं, फ्री में ट्यूशन भी ट्यूटर भी मिल जाते हैं। और पहली बात, बहुत से बच्चों के लिए तालीम जरूरी भी नहीं होता, ये भी नॉलेज है, हालांकि ये ना आठवीं पास है ना नवीं पास है, दसवीं पास। मेरे सामने गोल्ड और पीतल ला के रखो मैं नहीं फर्क कर सकता, अब तक नहीं कर सकता। आप मजाक समझ रहे हो, मेरे सामने अगर आप सोना और पीतल रख दो ना, मैं नहीं फर्क कर सकता इसमें सोना कौन सा है और पीतल। खवातीन कर लेती हमने, मैं नहीं कर सकता, मेरे जैसे बहुत से मर्द नहीं कर सकते होंगे, मुझे नहीं पता चलता ये गोल्ड है या क्या है, ये हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया भाई। अगर कभी खरीदा भी घर वालों के लिए तो घर वालों को ही दिखाया, तुम देख लो भाई क्या है, हमें तो नहीं पता भाई क्या है, रसीद को देख लिया, रसीद पे गोल्ड लिखा हुआ है, बंदा काबिल एतमाद है, ठीक है भाई। लेकिन एक कचरा चुनने वाले को गोल्ड पीतल सिल्वर कॉपर ये सब चीजों में फर्क पता होता है, ये भी पता होता है इसलिए कॉपर एक नंबर खालिस है, इसमें मिलावट है, हो सकता है किसी साइंटिस्ट को ना पता चल रहा हो। ये जो पहले जमाने के हकीम बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे, मेडिकल साइंस थोड़ी बड़ी होती, तजर्बे कर करके, नब्जें चेक कर करके, कर करके, कर करके, अलामतें देख देख के इतने एक्सपर्ट हो जाते थे, समझ जाते थे इसका इसकी शुगर बढ़ी हुई है, ये शुगर कम हुई हुई है, हालांकि कोई लैब नहीं थी। पहले जमाने में भी शुगर होती थी, हकीम कैसे इलाज करते थे, वो अंदाजा हो रहा है इसको यूं हो रहा है, उसको अंदाजा हो गया इसकी शुगर बढ़ी हुई है, उसको कहा कि उठक बैठक कर ली, लगाओ वर्जिश करवाई उसको, उसका शुगर लेवल क्या कर दिया डाउन। इस्तिलाहात नहीं थी लेकिन इलाज थे, इलाज पहले भी होते थे। ये रूट केनाल जो है ना, रूट केनाल फिरौनियों का हुआ हुआ है, उस जमाने में भी ये रूट केनाल होता था, हालांकि रूट केनाल का लफ्ज भी नहीं था उस जमाने में। तो इल्म का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं होता। मैं अपने दोस्तों को जानता हूं जिन्हें जो पढ़ते ही नहीं थे, कंप्यूटर पे बैठे ठिश पिश 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 करते करते वेबसाइट डिजाइनर बन गए, लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियों को वेबसाइट बना के दे रहे और करोड़पति बन गए। वो भी तो इल्म है, कोई कंप्यूटर साइंस में उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं किया। तो आपके बच्चे के लिए तालीम जरूरी है, कितनी जरूरी है ये खुदा को पता है। अल्लाह आपके बच्चे को स्कूल के पैसे या तो दे देगा या नहीं देगा, और बोल देगा नहीं दिए तो इसका मतलब इसके लिए नहीं देना ज्यादा जरूरी था, दे देता तो ये बेकार बन जाता इंसान। तो अब अल्लाह ने एक साइन के तौर पे बता दिया कि मैंने दूध पैदा कर दिया, जो सबसे मुश्किल काम था, जो किसी का बाप भी पैदा नहीं कर सकता था और अब तक पैदा नहीं कर सका। तभी डॉक्टर कहते हैं मां के दूध का ऑल्टरनेट कोई है ही नहीं। तो ये साइन है, अलामत है कि जो दूध पैदा कर सकता है, जो कोई नहीं पैदा कर सकता, तो वो बाकी चीजें क्यों पैदा नहीं कर सकता। ये तो एक अलामत है कि वो गाफिल नहीं है। तो इसलिए जो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं ना, जितनी आमदनी उस हिसाब से बच्चे पैदा करो, इस्लाम में इसकी हराम है ये सोच के नस्ल रोकना। इस्लाम कहता है रिस्क का वादा किसने किया है, रिस अल्लाह की जिम्मेदारी है। तो ये बच्चे अल्लाह की मखलूक पहले हैं, तुम्हारी औलाद बाद में। हाँ, बकरियां इतनी रखो जितना चारा खिला सकते हो, क्योंकि जानवर पे अल्लाह ने तुम्हें कंट्रोल दिया है। अगर मुर्गियों का दाना तुम्हारे पास नहीं है तो भूखा मत मारो उनको, क्योंकि जानवर हमारे लिए मुसख्खर है, हम उनकी नस्ल बढ़ा भी सकते हैं और अपने हिसाब से घटा भी सकते, इजाजत दी है। इंसान पे हमारा कंट्रोल नहीं है, अल्लाह ने हमें नहीं दिया कि इतने बच्चे पैदा। इंसान तो मकसूद कायनात है, इसकी ग्रोथ कितनी होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, ये कुदरत के अपने हाथ में है। इसमें इंसानों को टांग अड़ाने की इजाजत नहीं है। इंडिविजुअली किसी को कोई बीवी बीमार हो गई, कोई मसला हो गया, वो एक अलग बात है। उमूमी सतह पे ये तहरीक बिल्कुल हराम है कि नस्ल बढ़ाओ या नस्ल घटाओ, ना बढ़ाओ ना घटाओ, ये किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। आपकी आमदन है नहीं है, नस्ल रोकने की आपको इजाजत नहीं है, बल्कि ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है गरीब को अल्लाह बच्चा दे इसलिए रहा हो कि तेरी गुर्बत खत्म हो, क्योंकि ये बच्चा 15-20 साल में बड़ा होकर कमा के खिलाएगा। मैंने बहुत से गरीब देखे हैं, गरीब थे, बच्चे दबा के पैदा हुए, करोड़पति बन गए। और बहुत से अमीर देखे हैं, बच्चे ही नहीं थे, कारोबार दूसरों के हवाले किया, दुकान बेच के खा गए। अपने बच्चे तो अपने अब्बा का कारोबार अपना समझ के चलाते हैं ना। अच्छा मेरे भाई, अल्लाह ताला कुरान परमाता है, जब फरिश्तों का नहीं सही हो गया मेरे भाई, मुफ्ती साहब नाराज नहीं हुई है, मुझे लगता है कि कि आप भी आम नौजवानों की तरह ही हैं, ज्यादा बुजुर्गों और मुत्तकी मालूम नहीं होते। आप हमें जैसा उलमा सुलहा होते हैं, यानी आप भी नॉर्मल लगते हैं, मैं कोई बुजुर्ग बुजुर्ग टाइप की चीज नहीं लगते। तो है, मैंने कब कहा मैं बुजुर्ग हूँ भाई, मैं तो सादा सा शादियों वाला मैं तो खुद लोगों को दूसरों से बैत का मशवरा इसी वजह से दे रहा होता हूँ, भाई फिरोज मेमन साहब से बैत हो जाओ, जाके बैत हो जाओ, ये यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अहमद साहब है उनसे बैत हो जाओ, और जामत रशीद में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं, मौलाना कासिम साहब हैं उनसे बैत हो जाओ, दारुल उलूम करंगी में हजरत मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब हैं और तीसरे उनसे बैत हो जाओ, केपीके में हजरत पीर मुख्तारुद्दीन शाह साहब हैं, बड़ा जबरदस्त सिलसिला, उनसे बैत हो जाओ। तो हम तो खुद आपको मशवरा दे रहे हैं इस सिलसिले में जी। हाँ, सवाल करने का मकसद है कि आप बुजुर्ग बनो, इनका मकसद ये है जिन्होंने भी सवाल किया ना कि आप क्यों ऐसे हो, आप बनो, आप नेक बनो। तो कोशिश करता हूं इंशाल्लाह कल से, नसीहत तो सुननी चाहिए ना, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, एक साहब एतराज कर रहे थे, आज के दौर में मोबाइल में जखीरे हदीस और दर्जनों तफासिर मिल जाती हैं, बहुत इल्म मौजूद है, जबकि पहले तो एक एक हदीस से हासिल होंगे, इतना दूर सफर करना होता था, वसाइल नहीं थे, तो फिर तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि हमारा इल्म आइम्मा अरबा और असलाफ से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बहुत ये फर्ज नहीं, हकीकत है, हमारा इल्म उनसे ज्यादा नहीं हो सकता। ये कहते हैं आजकल तो गूगल पे सारी हदीसें मिल जाती हैं, आइम्मा इकराम को तो दूर दूर सफर करना पड़ता था, तो आइम्मा इकराम ने दूर दूर सफर किया है और सफर करके हदीसें ली हैं, सीनों में महफूज की हैं। आज हम गूगल से सर्च करके लेते हैं, उनके इल्म में और हमारे इल्म में फर्क ये है कि उनका इल्म मुशाहिदे पर मबनी था, उन्हें जब कोई हदीस पहुंचती थी अपनी सनद के साथ पहुंचती थी, और एक एक दो दो सिलसिलों के साथ, जैसे इमाम हनीफा को कोई हदीस पहुंचेगी तो इमाम हनीफा क्या हदीस में बयान करेंगे कि मुझे बयान किया, जैसे उनकी जो मजबूत तरीन सनद है, मुझसे बयान किया हम्माद अलकूफी ने, बहुत बड़े कूफा के फकी हैं, वो कहेंगे मुझसे बयान किया इब्राहिम नखई ने, बहुत बड़े ताबिई हैं, वो बहुत बड़े फकी हैं जिन्होंने ताबिईन को नमाजें पढ़ते हुए देखा, वो कहेंगे मुझसे अलकमा ने बयान किया, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ पूरी जिंदगी उनकी चिपक के गुजरी है, ठीक है ना, सारी जिंदगी उठना बैठना अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ रहा, और अब्दुल्ला बिन मसूद से वो बयान करते हैं, और अब्दुल्ला बिन मसूद नबी के साथ सारी जिंदगी चिपक के रहे हैं बिल्कुल। साहबा कहते हैं हम आपको घर का फर्ज समझते थे। तो ये इल्म गूगल इसका इसके लेवल का हो ही नहीं सकता। तो ये बकवास है कि इन चारों इमाम और इन मुश्तहिदीन से ज्यादा हमारा इल्म है, चूंकि हमने मकतबा शामिला और मकतबा तुरास और गूगल हमारे पास है। आपका सारा किताबों का बोझ भी आप रख लो तो आपकी मिसाल ऐसे ही है, कमसलिल हिमारी यहमिलु असफारा, वो तफक्को, वो बसीरत, वो तकवा और मुशाहिदे का इल्म, जैसे कोई हदीस सहाबी बयान कर रहा है तो वो उनको देख भी रहे हैं, नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं, जकातें देते हुए देख रहे हैं, तो वो इल्म का। हाँ, ये हर इंसान से हो सकता है कि कोई हदीस किसी तक ना पहुंची हो, ये तो आज भी हो सकता है। कितनी दफा आप तहकीक कर रहे होते, गूगल मकतबा शामिला सब में तलाश कर लिया, बाद में पता चला यार ये तो हदीस मौजूद है, हमारी नजर से नहीं गुजरी, तो ये उनके साथ भी हो सकता था। लेकिन उनके साथ अगर हुआ है ऐसा तो उनके शागिर्दों ने करेक्शन कर ली, यार हमारे उस्ताद को ये हदीस नहीं पहुंची थी, तो उन्होंने करेक्शन कर ली और वो फिका का हिस्सा बन गई वो, और आज करेक्शन भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह, जो तफक्को और बसीरत उन लोगों में थी वो थोड़ी आज हो सकती है। ये खूब समझ लो, फिका पहले मुदव्वन हुआ है, हदीस बाद में मुदव्वन हुई है, कुरान और सुन्नत से मसाइल निकाल के किताबें पहले लिखी गई हैं और हदीस की किताबें बाद में लिखी गई हैं। तो अब अगर हम इन लिखी हुई किताबों ही के मोहताज होते तो इसका मतलब इस्लामी कानून ही गलत मुरतब हो गया था पहले, तो ये तो बात ही उल्टी हो जाएगी कि मतलब दो तीन सौ साल तक तो मुसलमान घास खाते रहे थे, उसके बाद हदीस मुरतब हुई और सीधे इस्लाम पे आए, ऐसा थोड़ी है भाई। हदीस मुरतब बाद में हुई है, ये थोड़ी कि हदीस पहले थी नहीं, पहले सनदों के साथ सीना बसीना हदीस चलती थी, उसी कोई रोशनी में उन्होंने मसाइल निकाल के अखज करके मुरतब कर दिए, क्योंकि फिका को मुरतब करने की जरूरत पहले ज्यादा थी, ज्यादा इसलिए थी कि इस्लामी लॉ तो फौरन चाहिए ना, तो उसको पहले मुरतब कर लिया गया, हदीसें बाद में फिर रिटर्न फॉर्म में लाई गई, लेकिन हदीसें थी पहले। इमाम हनीफा अपनी सनदों से, अब्दुल्ला मुबारक अपनी सनदों से, सुफियान थौरी अपनी सनदों से, इब्राहिम नखई अपनी सनदों से, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द थे इकरमा, مجاہد یہ سارے سعید ابن جبیر یہ ساری ان کے علم کیا تھے بھائی؟ سعید ابن جبیر عبداللہ بن عباس کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فتوے دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تاؤس دیکھ رہے ہیں، یہ تو ان کے لیول کا ٹکر کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے جس نے 23 سال نبی کی زندگی میں کے ساتھ گزارے ہوں، نبی کے ساتھ جس نے 23 سال گزارے ہوں، 20 سال نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جہاد کیا ہو، اور وہ ہمیں بتائے نبی نے ایسے نماز پڑھی، آپ ساری بخاری مسلم کو ایک طرف رکھ دو گے، آپ بولے گا بھائی سب کے کیا کر دو سائڈ سے، یہ تو دیکھ کے آ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھ کے آ رہا ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ آنا ممکن نہیں ہے اس لیے، لیکن یہ چاروں ائمہ انہوں نے جن سے علم حاصل کیا وہ سارے ایسے ہی بندے تھے، وہ سارے ہی ایسے بندے تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، تو اس لیے ان کے ٹکر کا علم اب ہو نہیں سکتا، امپوسیبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تبھی آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ساری حدیثیں پتا ہوتی ہیں، یہ پھینکتے کتنی لمبی لمبی ہیں، بدر کا طریقہ آج تک ہم غلط پڑھتے رہے، اس نے پورا یہی پوری تحقیق کے بعد ہی مسئلہ بیان کیا تھا، آج تک ہم بدر گھات کھاتے رہے ہیں، اتنا کنفیوژن پیدا کی دنیا میں، جہاں بھی جاؤ لوگ پریشان تھے یار کہ مفتی صاحب اتنی بڑی کنفیوژن اس بندے نے، ہم نے کہا 20 سال سے ہم غلط نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھ لیا، وہی تھے، مکتبہ شاملہ والے ہی ہوتے ہیں یہ، وہ لوگ مکتبہ تراث والے، گوگل مفتی ہوتے ہیں یہ، تو اس کا اب تک کوئی جواب آیا نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے ریکارڈ کروایا، حدیث میں آتا ہے 5 رکعتیں بدر پڑھتے تھے اور آخر میں بیٹھتے تھے، مفتی صاحب نے اس حدیث کا تو جواب دیا ہی نہیں ہے، تو اس حدیث کا جواب اس لیے کہ یہ اس کی دلیل میں ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، وہ تو جو آپ کے دعوے کی دلیلیں تھیں ان کا جواب دیا۔ اس حدیث کا مطلب کہ 5 رکعت وتر میں آخر میں بیٹھتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت وتر اور 2 نفل پورے کو وتر کہا گیا ہے، کیونکہ امام ترمذی نے کہا پوری صلاۃ اللیل کو بھی کیا کہا جاتا تھا وتر، تو 5 رکعت وتر میں صرف آخر میں بیٹھنے کا مطلب، باقی پوری تہجد کھڑے ہو کر ہوتی تھی، آخری 2 رکعتیں بیٹھ کے ہوتی تھیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے نبی وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے، تو اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے، یہ آپ کی بنائی ہوئی تفسیر ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد نہ بیٹھتے تھے نہ سلام پھیرتے تھے، وہ ابن جریج سے مروی ہے جو مدلس ہے اور عن کے ساتھ ہے، تو وہ انتہائی شدید ضعیف حدیث ہے وہ، اور ایک نے تو اتنی لمبی پھینکی میرے نیچے نا اس کلپ پہ، کچھ افلاطونوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، کہہ رہے مفتی صاحب نے بڑی خیانت کی ہے، یہ حدیث تو چرا لی مفتی صاحب نے، حضرت عطا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے بھی نہیں تھے، اور آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے اور بیٹھتے بھی نہیں تھے نہ سلام پھیرتے تھے، مفتی صاحب نے بہت بڑی چوری کر لی، یہ حدیث چھپا لی۔ تو حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، نیچے ترجمہ بھی، عربی الفاظ میں یہ کہ عطا خود ایسا کرتے تھے، اور ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے، عطا کہتے ہیں نبی ایسا کرتے تھے۔ میں نے کہا یہ تو ان بغیرتوں کا حال ہے یار، تمہیں اتنا نہیں پتا چل رہا کہ عطا اپنا عمل بیان کر رہے ہیں یا نبی کا عمل بیان کر رہے ہیں، ترجمے میں تم نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو اور بنے ہوئے ہیں مجتہد، کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تقلید نہیں، ہم قرآن حدیث، تو یہ منجن کسی اور کے سامنے جا کے بیچا کرو قرآن حدیث، ترجمے ان کمبختوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی جگہ یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی یہ کیا کرتے تھے، کہاں کہتے ہیں حضرت عطا، کہاں لکھا ہوا ہے میں دکھاؤ، کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے نا بے کمبخت، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، حضرت عطا کیا اردو اسپیکنگ تھے، اردو میں بول کے گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ عربی سے ترجمہ ہم نے کیا ہے، تو بھائی یہ ترجمہ غلط کیا ہے، حضرت عطا نے نبی کی طرف نسبت، ان کا اپنا اجتہاد تھا یہ، تو ہم حضرت عائشہ کے عمل کو لیتے ہیں، حضرت عائشہ نبی کی وتر کو زیادہ سمجھتی تھی، حضرت عائشہ سے وتر کا وہی طریقہ ثابت ہے جس طرح سے حنفی پڑھتے ہیں، بالکل ایز اٹ از یہی طریقہ ثابت ہے، اور باقی تمام طریقوں کی نفی ہے سیدہ عائشہ سے، باقی ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے تو اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم حضرت عائشہ کو فالو کر رہے ہیں، اور اس سے حدیث مرفوع بھی ہے، نبی کا عمل بھی ہے، اور عبداللہ بن عمر کا عمل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، تو اس کے جوابات 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے نہیں پھیرنا ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس میں بھی ان شاء اللہ ریکارڈ کرواؤں گا، لیکن وتر 3 پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد آپ کو قعدہ کرنا پڑے گا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خود حرم میں وتر پڑھے ہیں، امام کعبہ نے تراوی کے بعد 3 وتر پڑھائے، 2 رکعت کے بعد قعدہ نہیں کیا، ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، صاحب امام کعبہ تو غلط نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ ایک اصول پہ ٹکو، آپ بولو پھر قرآن و حدیث کی میں ہمیشہ وہ تشریح مانوں گا جو امام کعبہ سے منکر، دلیل ولی کی بات مت کرو، تو اس کے جواب میں پھر ہم کہیں گے آج آپ امام کعبہ کی تقلید کر رہے ہو، ہم ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں، پھر جو تبع تابعین میں سے اور راج قول کے مطابق تابعین میں سے تھے جن کو 50% سے زائد امت نے فالو کیا. برے ہم امام کعبہ کو بھی نہیں کہتے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو پھر آپ مقابلہ نبی کا ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ, پھر آپ ابو حنیفہ کا امام کعبہ سے مقابلہ کراؤ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں امام حنیفہ کا پلہ بھاری ہے. اور اگر دلیل کی بات کرنی ہے تو دلیل سے ثابت کرو. پھر آپ امام یہ نہیں کہو امام کعبہ یہ کرتے ہیں تو امام سدیس یہ کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں حرم میں کیسے غلط ہو سکتا ہے. یقیناً حرم میں غلط نہیں ہو سکتا بشرطے کہ 1400 سال سے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم میں 1400 سال سے غلط نماز پڑھی جا رہی ہو. ہاں جس نماز میں اختلاف ہے تو حنفیوں کی تو 700 سال حرم میں حکومت رہی ہے. 700 سال تو وہ حکومت رہی ہے جو پکی ڈھکی, اور اس سے پہلے بھی زیادہ تر حنفی ہی رہے ہیں. 700 سال تو ہوئے جو حنفی تھے دنیا میں, یعنی ان کی ایسا خلافت تھی کہ وہ غیر مسلموں کو جب فقہ کی کتابیں دی جاتی تھی نا اسلامی قانون, تو فقہ حنفی ہی بتایا جاتا تھا ان کو. ہمارے دوست نے جرمنی کی یونیورسٹی میں جو اسلام پڑھا ہے نا, اس میں اب تک قدوری پڑھائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, قدوری. کیونکہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو اسلامی لا انٹروڈیوس ہوتا تھا نا غیر مسلم کنٹریز میں, وہ قدوری اور ہدایہ ہوتا تھا. تبھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے اسلامی قانون کے طور پر, اور اب بھی یہ بہت ساری ان کی یونیورسٹیوں میں. خیر کہاں سے کام چلے گئے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو تقلید کرو یا تحقیق کرو. تم کمبخت ہو نہ تقلید کے نہ تم تحقیق کے. جہاں سے تمہیں فتویٰ مل رہا ہے اٹھا کے وہیں سے پھینک دیا. تو حرم میں تو 1400 سال پھر 20 رکعت تراویح پڑی گئی ہے, تو آپ کیوں اس کو نہیں مانتے پھر. اچھا میرے بھائی مفتزام, یہ سوال یہ کہ کوئی بھی ہندو کو مسجد میں جانا جائز ہے اور بیان سن سکتا ہے؟ جی بالکل جائز. کیا مستحب ہے کہ اس کو مسجدوں میں لائیں اور بیان سنوائیں. غیر مسلم نبی کے دور میں بھی مسجد نبی میں آئے ہیں. مفتی صاحب میری بیٹی جس کی عمر تقریباً 18 سال ہے, اس کے پاس 1.92 تولے سونا موجود ہے. اور میری بیٹی کی عمر 16 سال ہے, اس کی پاس موجود ہے. میرے بچے دونوں فی زمانہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی کفالت میرے ذمہ, ان دونوں بچوں کی بہت لمبا میرے بھائی. دیکھو جو نابالغ بچے ہیں, بچی کی عمر 18 سال ہے وہ تو بالغ ہے, اس کے جو گفٹ آئے یا اس کو جو سونا ملا اس کی زکات بھی ہے, اور جو گفٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کرے. اور بچے کی عمر بھی 16 سال ہے, وہ بھی بالغ ہو گیا. تو دونوں کے حکام وہی ہیں جو بڑوں کے حکام ہیں, سونے پہ زکات بھی ہے اور جو ان کو گفٹ ملیں گے وہ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتے ہیں. نابالغ بچے کے پاس جو مال ہے اس پہ زکات بھی نہیں ہے, اور اس کو جو گفٹ ملے تو وہ استعمال بھی نہیں ہو سکتے, وہ بچے ہی کے مفاد میں استعمال کیے جائیں گے. وہ بچہ کسی اور کو گفٹ نہیں دے سکتا. اگر بچے کو آپ نے عادت ڈلوانی ہے گفٹ دینے کی, تو پھر جتنے ہی مالیت کا وہ گفٹ ہے بچے سے کہیں وہ اتنے کو فلاں کو دے دے, نیت یہ کر لیں ہماری طرف سے, اور اتنے پیسے بچے کو آپ دے دیں یا اتنی کی کوئی دوسری چیز خرید کے دے دیں اس کو.